ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 8 अध्याय 42 सा तद ऋजु समान अंगी सा तदर्जु समानांगी बृहत् चोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ततो रूप गुण उदार्य संपन्ना प्राह केशवाम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ति जातहृच्छया एहि वीरगृहं याम न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं दीक्षानुगानं च प्रहसंस्तामुवाचः एष्यामि ते गृहं शुभ्रुः पुंसामाधिविकर्षन साधितार्थो गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायण विसृज्य माद्व्यावाण्या विसृज्य माद्व्यावाण्या ताम् व्रजन मार्गे वणिक पथहे नानोपायन तांबूला सगंधै साग्रजोर्चितः तद्दर्शन स्मरक्षोभात् आत्मानं नाविदं स्त्रियः विश्रस्तवासः कबर बलया लेख्यमूर्तयः सा वह परम भाग्यवती कुब्जा सदा उसी समय जिस समय मुकुंद ने स्पर्श किया रिजु सीधा समान एक समान अंगी अंग वाली शरीर वाली बृहत बड़े बड़े श्रोणी नितंब वाली पयोधरा और पयोधर वाली मुकुंद स्पर्शनात् मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला भक्ति रस का आनंद जो देते हैं उनके श्री कृष्ण के स्पर्श से सद्य तत्काल बभुवा हो गई। प्रमदोत्तमा सुंदर स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ। आज यहां इस श्रीमद् भागवतम सत्र का तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। आज भगवान के मथुरा प्रवेश के बाद जो उन्होंने लीला किया मथुरा में ही, और उसी दिन जिस दिन वे ब्रज से मथुरा जी आए उसी दिन की अभी लीला चल रही है। तो हम लोगों ने आस्वादन किया भगवान किस प्रकार रजक का उद्धार किए, इसके बाद भाग्यवान दर्जी जिसका नाम नहीं यहां लिखा गया है, सुखदेव गोस्वामी को नहीं याद होगा तो नाम जानकारी नाम की नहीं होगी, अथवा भाव में अब नाम आदि नहीं कहे, सीधे लीला ही कहने लगे। तो दर्जी को उपाख्यान आया, इसके बाद अति सौभाग्यशाली सुदामा नामक मालाकार का चरित्र आया, इसके द्वारा भगवान की गई सेवा और भक्ति का वर्णन किया गया। सुदामा के घर से चलकर भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ मथुरा के राजपथ पर पुनः चल रहे हैं। संध्या का समय है, उनको रास्ते में कुब्जा मिली, उसका उद्धार किया भगवान ने, उसे परम सुंदर बना दिया, कोई बाहरी उपकरण से नहीं, केवल उसको छू करके। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे जोर से खींचे और एकाएक बोली ओह, ऐसा नहीं हुआ, केवल छूने से। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं मुकुंद स्पर्शना, उन्होंने केवल वो पोज किया, छुआ ऐसे। उद उत अनि नमत, ऊपर उठाया, केवल छुआ ही, ऊपर उठाने का एक अभिनय किया, लीला किया, और तब तक तो बिल्कुल सीधा हो गई। तो सुखदेव गोस्वामी यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। आज सवेरे के सत्र में यहां तक लीला पूरी की जाएगी। भगवान सैरंध्री का कुब्जा का उद्धार करने के बाद नगर के लोगों से पूछेंगे ये धनुष यज्ञ कहां हो रहा है, ततः पौरन पृच्छमाना, पूर्ववासियों से पूछे कि धनुष यज्ञ कहां है, कहां मतलब मंडप कहां है, यज्ञ कहां हो रहा है। बहुत विशाल धनुष था, 3.5 लाख मन उसका वजन था, जो कोई उठा नहीं सकता था, केवल कंस उठाया था। एक बार दूसरे में शक्ति नहीं थी उठाने, तो एक जगह रख दिया गया था, उस धनुष जहां रखा गया था वहीं पर यज्ञ मंडप बहुत अच्छा बना हुआ था विशाल। तो सर्वज्ञ ईश्वर श्री कृष्ण पूछे ततः पौराण पृच्छमान, कैसे रास्ता जाएगा, कहां पर धनुष यज्ञ है, उस धनुष को तोड़कर फेंकना था। एक अद्भुत लीला है श्री कृष्ण, धनुष तोड़ने के बाद कई लोग दौड़े कृष्ण को मारने के लिए, वहां रक्षक जो थे उस सेना जो रिजर्व सेना थी पुलिस थे तो रक्षा कर ही रहे थे। धनुष टूटने के बाद कंस ने भेजा पलटन, तो उन सबको श्री कृष्ण बलराम धनुष के एक एक टुकड़ा से एक एक बार मारते गए, सब खत्म हो गए। इसके बाद अंततः कहां जाना था कृष्ण बलराम को? डेस्टिनेशन तो था कंस की रंगशाला, जहां मल्लों के साथ युद्ध होना था। ऐसे बाहरी एडवर्टाइजमेंट यही था कि दंगल हो रहा है राजा के मनोरंजन के लिए, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कृष्ण बलराम को मारने के लिए ही वो दंगल किया जा रहा था। पहलवानों को कंस ने खूब ट्रेनिंग दिया था और बताया था कि उसको ऐसे मारना है। धनुष यज्ञ में आएंगे, धनुष देखने, परिक्रमा करने, प्रणाम करने, तो उस समय भी कुछ सैनिक तैनात थे कि उस मार देना उनको। वहां से फिर अगर बच जाएंगे तो रंगशाला में आएंगे ही, जहां पहलवानी होनी थी, वहां पर कुबलया पीड़ हाथी को खड़ा कराया था और महावत को कहा था कि उन दोनों को मार देना हाथी द्वारा। और स्वयं ही कहता है यदि वहां से बच गए, हमेशा बचने की बात कंस कहा करता, यदि वहां से बच गए तो फिर पहलवानों से भिड़ाऊंगे, चारूण मुष्टिक कूट सल तो सल, पांच पहलवान तो बहुत विशाल थे और उनके अधीन हजारों पहलवान कंटा कुश्ती कर रहे थे, कई दिन से ट्रेनिंग ले रहे थे हमको मारना है। और जिस दिन भगवान रंगशाला में प्रवेश करेंगे वो सारे पहलवान मारे जाएंगे। तो कृष्ण बलराम को मारने की तैयारी थी, पर उस दिन शाम हो गई, रात हो गई, तो श्री भगवान ने मथुरा भ्रमण बंद कर दिए और जहां नंद बाबा रुके थे और गोप लोग रुके थे, शकट का उन्मोचन किया गया था बगीचे में, फिर चले आए। उस समय कोई ऐसा गेस्ट हाउस नहीं था कि वहां कृष्ण जाकर के रहें शहर में, तो फिर जहां अपनी बैलगाड़ी खड़ी थी, कई बैलगाड़ियां थी और नंद बाबा थे, तो फिर दोनों भाई जाकर के वहीं सोए। और दूसरे दिन कृष्ण बलराम जब उठे और अपना श्रीमुख दौड़ आए थे सुंदर सवेरे का अतिरिक्त, तब तक कृष्ण ने सुना, श्री बलराम जी ने सुना, मल्ल दुंद भी निर्घोषम, पहलवानों को लड़ाने के लिए मल युद्ध के लिए बहुत दुमदुमियां बज रही थी, बाजे बज रही थी, इतना बाजा बज रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। उसको सुनते ही कृष्ण कहे ये भैया देर हो रही है, चलो चलो चलो। सब लोग चले गए, नंद बाबा चले गए थे, नंद बाबा और गोप सब चले गए थे, तो कंस ने स्पेशल बुलाया था उनको वहां आने के बाद भी। और ये लिखा था या कहलवाया था कि नंद महाराज से कहना कोई बात नहीं, आपके दोनों लड़के धनुष तोड़ दिए तो इससे अच्छा हुआ उनके वीरता का परिचय चला, महान बलवान हूं, कोई बात नहीं, लड़के गलती कर दी, नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन आप आइए, आपके लिए मंच कुर्सियां स्पेशल हैं। लिखा गया था ब्रजवासी वहां केवल वही बैठते थे, बहुत बड़ी रंगशाला थी वो, आजकल के जैसे स्टेडियम बनाए जाते हैं बिल्कुल गोलाकार बनाया गया, चालीस गोलाकार, और नीचे अखाड़ा था, उस अखाड़ा में दंगल होना था। दंगल इसलिए कि राजा कौन को प्रसन्न करना है, और राजा ये कहा था कि बस ऐसी लड़ना है कहीं मर्म स्थान में घुसा मार देना या गर्दन ऐंठ देना, मार देना जिससे मर जाए, इसके लिए हो रहा था। तो बीच में था अखाड़ा और क्रम से अब उत्तरोत्तर ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनी हुई थी चारों तरफ। वास्तव में कौन सभी परम भाग्यशाली व्यक्ति था जिसके द्वारा रचित उत्सव में श्री भगवान गए, वह सबको दर्शन हुआ, तो आज सवेरे के सत्र में कृष्ण का मथुरा भ्रमण पूरा किया जाएगा, जाकर के सोएंगे। दूसरे सत्र में कृष्ण बलराम और उनके कुछ सखाओं का रंग भूमि में प्रवेश कराया जाएगा। रंग भूमि में मूल गेट पर ही बहुत अड़ंगा पैदा किया गया था। जो गेट था प्रवेश करने का, तो सब लोग पहले गए, चले गए, चले नंद बाबा जी भी चले गए, लेकिन स्पेशल शिक्षा थी कंस की महावत को, कि जब कृष्ण बलराम आवे तो हाथी को एकदम तिरछा खड़ा कर देना, और अगर वो आने की कोशिश किए तो हाथी को ऐसी ट्रेनिंग थी कि आते ही वो सूंड हमें पकड़ ले और पैर से दबा दे, दोनों मर जाए। और वो कुबलया पीढ़ 10,000 हाथी का बल रखता था। वो भी आजकल का टूटा मोटा मरा हुआ हाथी नहीं, एक नंबर के स्वस्थ हाथी, 10,000 हाथी का बल उस कुबलया पीढ़ में था। किसी ने उस पर कंट्रोल नहीं किया था, वो हाथी घूमता रहता था। और जानते हैं वो हाथी किसका था? कंस के ससुर जरासंध जी का हाथी था, मतवाला हाथी। तो जरासंध ने अनाउंस कर दिया था कि जो व्यक्ति, जो क्षत्रिय योद्धा इस हाथी पर कंट्रोल करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करूंगा, अस्थि और प्राप्ति का। पुत्री का नाम था अस्थि और एक का प्राप्ति, जरासंध की पुत्री। सारी दुनिया में घूमता रहा हाथी, कोई उसको वश में नहीं किया। कौन सा अद्भुत वीर था, उसने कमर कस करके उस हाथी के साथ युद्ध किया और उसको अपने वश में कर लिया। उस पर चढ़ करके अंकुश लगाता हुआ जरासंध की राजधानी में पहुंचा। बस विवाह का यही हेतु था, विवाह हुआ। इसके बाद जरासंध ने वो हाथी दहेज में दे दिया कंस को, उसी विशाल हाथी को, कुबलया पीढ़ को रखा गया था रंगशाला के गेट पर कृष्ण बलराम को मारने के लिए। ये लीलाएं बहुत आनंददायक हैं, किस तरह से हाथी के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है। खाली हाथ, कृष्ण कुछ लिए नहीं थे, हाथी के सूंड पर थप्पड़ मार रहे हैं तो पूछ पकड़कर खींचे। इन सब लीलाओं का वर्णन दोपहर की कथा के बाद आएगा। तो यहां अभी सैरंध्री का उपाख्यान चल रहा है, कुछ श्लोक बाकी रह गए। जब श्रीकृष्ण ने उसके शरीर को छुआ, किस तरह से छुआ, दोनों पैरों से उसके पैर को दबाया और वाम हस्त को उसके पीठ पर रखा और दाहिने हाथ को उत्तान करके ऐसे और दो अंगुलियों को उसके चिबुक पर रखा, थोड़ा सा ऊपर उठाया, साप तदा उसी समय वह कुब्जा रिजु समानांगी हो गई। रिजु का अर्थ सीधा और समान अंग, समान अंग। पहले समान अंग नहीं था उसका, क्योंकि पीठ पर कुबर था तो स्तन बिल्कुल नहीं के बराबर था, छाती बिल्कुल सिकड़ी हुई थी। पीठ पर कुबर था और नितंब भी, श्रोणी उठे हुए नहीं थे। तो शरीर का कोई अंग समान नहीं था, कोई बड़ा है कोई छोटा है अपने ढंग से। लेकिन जो ही भगवान ने स्पर्श किया, उसी समय सद्य तत्काल बभुव प्रमोदोत्तमा, श्रेष्ठ स्त्री हो गई और क्या क्या हो गए, बृहत् श्रोणि पयोधरा, उसके स्तन बड़े बड़े तुरंत हो गए भगवान के स्पर्श से, और नितंब भी, श्रोणी भी बड़ा, तो बृहत् श्रोणि पयोधरा। बृहतौ नितंबौ स्तनौ जस्या सा। और अत्यंत सुंदरी नारी बन गई, सुंदर स्त्री हो गई। मुकुंद स्पर्शनाथ, मुकुंद का अर्थ करते हैं श्री सनातन गोस्वामी, मुंह का अर्थ है मुक्ति सुख, मुंह शब्द से मुक्ति सुख, और कु का अर्थ है कुत्सित, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देता है, जो परम आनंद अर्थात भक्ति लक्षण परम आनंद, उस आनंद को द जो देता है उसको मुकुंद कहते हैं। वह परमानंद, वह सुख जो मुक्ति के सुख को भी तिरस्कृत करता है अर्थात प्रेमानंद, परम आनंद श्री कृष्ण देते हैं, इसी के कारण उनका नाम है मुकुंद। तो मुकुंद के स्पर्श से ए मथुरा बिहारी क्या कर रहे हो, हैं ये कौन बैठने का ढंग है, भगवान मथुरा में घूम रहे हैं इसका नाम मथुरा बिहारी, सोने की तैयारी में। बीच बीच में हम नाम अकस्मात बोल देंगे, कोई अब संकोच की बात नहीं है। हाँ हाँ खड़ा करा दिया जाए, खड़ा रहने पर और लोग तो सावधान रहेंगे। एक बार खड़ा कराया गया था तो एक लड़का खड़ा होकर के गिर पड़ा सोने में। खास करके गीत गाने वाले ये तो बस गाने के लिए ही उत्सुक रहते हैं, सुनते समय बस चुपचाप। गाने को मिले तो दिन दिन भर गाते रहेंगे, सुनने में कान कमजोर है। पर बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि डबल कान भगवान बनाए हैं, दुगुना सुनना चाहिए। तो जब बहुत सुंदर रूप हो गया, वहीं पर श्री बलराम जी हैं, सखा हैं, कृष्ण हैं, बहुत सुंदरी स्त्री जब हो गई कुब्जा, वास्तव में वह भगवान की प्रिया है, तो भगवान के समान ही तो उसका सौंदर्य होना चाहिए। ततो रूप गुणौ दार्ज संपन्ना प्राह केशवम उत्तरी यांतमा कृष्य स्मयंती जात हृदय। कुब्जा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति काम का उदय हुआ। जात हृच्छया, हृच्छा मतलब हृदय में जो सोया हुआ भाव था, उसकी जो वासना थी, भगवान कृष्ण के प्रति कोई वासना हो तो वो अप्राकृत है, दिव्य है, लौकिक नहीं है। तो हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की कामना ददक उठी, तो वह सबके सामने, सारा समाज है, श्री बलराम जी हैं, और श्री कृष्ण अब चलने के लिए उद्यत हुए। ठीक है तो हम चलते हैं, आपने अंगराग दिया और हमने आपको अंग दिया, मतलब सुंदर स्वरूप बना दिया, अंगराग माने परम सुंदर स्वरूप। अब चलते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं, बड़े होते हैं, वे कोई उपकार कर देते हैं किसी का, तो उससे कुछ प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं। और छोटे लोगों का काम है कि थोड़ा उपकार करेंगे तो बहुत बड़ी प्रशंसा सुनेंगे, सुनकर के तब जाएंगे। श्री कृष्ण वहां रुकना नहीं चाहते थे, घटना हो गई है, सब लोग चकित हो रहे हैं कि श्री कृष्ण इशारा किए कुब्जा के गच्छा तान चलते हैं। जब ही चलने के लिए उत्सुक हुए तो उनका पीताम्बर उसने पकड़ लिया, और पीताम्बर ऐसे था उसमें श्री कृष्ण का, उसे गला से लटका हुआ था, छोर इधर था, तो उसने दोनों छोर को पकड़ लिया कि भगवान पर इस तरह से अपना अधिकार समझना, ऐसा व्यवहार किए हैं, ऐसा प्रेम किए हैं कि उपजा उनको अपना समझने लगे और समाज के बीच में उत्तरीयांतम आकृष्य श्री कृष्ण के उत्तरीय के अंत को छोर को पकड़ ले, जाने नहीं दी, भगवान रुक गए और उत्तरीयांत पकड़ करके और भगवान से बोली, किससे बोली, केशव से बोली, क माने ब्रह्मा जी और इस माने भगवान शिव, इन दोनों को परम सुख देते हैं श्री कृष्ण, इन दोनों को कंट्रोल में रखते हैं। तो जो शिव जी को कंट्रोल में रखते हैं, ब्रह्मा जी को कंट्रोल में रखते हैं, अतः सारे देवताओं के जो कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, उन पर कंट्रोल कुब्जा कर रही है, ये भाव है। केशव को पकड़ा उत्तरीयांत द्वारा कि नहीं आप नहीं जा सकते, श्री बलराम जी वही हैं। केशव पकड़े गए हैं गले में लटका हुआ पीताम्बर पकड़ लिया, वैसे वो वाणी से भी रोकती तो रुक ही जाते भगवान, लेकिन चलने के लिए तैयार हुए तो उसने पकड़ करके और उनसे कहा स्मयं के और मुस्कुरा करके बोल रही, भगवान श्री कृष्ण के प्रति काम वासना पैदा हो किसी में तो परम भाग्य की बात है, उनके प्रति होने वाला काम काम नहीं है। भगवान कृष्ण के प्रति कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो वो विचार दिव्य हो जाता है। संस्कृत में कविता में कवि ने कहा है कि अधिष्ठान के भेद से अधिष्ठित वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है, जैसे अग्नि है, जैसे जल स्वाति का बूंद वो बादल से गिरता है, अगर अधिष्ठान भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न गति होती है। अधिष्ठान का अर्थ जहां पर टीके, अगर स्वाति का बूंद हाथी के मस्तक पर गिरता है तो बूंद गजमौतिक मौक्तिक बन जाता है, मुक्त उसके सिर में मुक्ता मणि बनती है। यदि भुजंग के सर्प के मुख में वो स्वाति का बूंद पड़े तो बहुत कड़ा विष बनता है, इसे कहा गया है। और वह बूंद यदि कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती जैसा चमकता है, और जमीन पर गिरे मिट्टी पर तो तुरंत सूख जाता है, और दहकते हुए आग पर अंगार पर तप्त लोहे पर अगर गिरे वो जल फनफन फनफन जलकर खत्म हो जाता है। अधिष्ठान का इतना महत्व। पर काम विकार काम वासना किसके प्रति हो रही है, जो स्वयं पर ब्रह्म है श्री भगवान है, वह विचार अगर काम भी है कुछ भी है तो दिव्य हो जाता है उनके गुण से, वे इतने महान। अरे जिनके प्रति द्वेष भाव करके भी पूतना स्तन पिला करके भी मारने के नियत से और मां की गति प्राप्त की, तो उनके प्रति यदि परम सुंदरी कुब्जा की यह बुद्धि हो रही है कि ये हमारे घर चले और हमारे शरीर को इतना सुंदर बनाए कि इस शरीर से मैं और स्पर्श चाहती, इनका संग चाहती हूं, तो यह बहुत उत्तम बात है। इसी आशय से अब इसमें जात हृच्छया भगवान से मिलने की कामना उदित हुई तो उत्तरीयांत पकड़ करके, उत्तरीय का अंतिम छोर पकड़ करके और हंसती हुई केशव से बोली। रूप गुण से औदार्ज हो गए थे, रूप गुण से संपन्न हो गए थे, यहां रूपोदार्ज है, रूप गुणोदार्ज संपन्न का अर्थ है कि रूप और गुण में की महिमा से संपन्न हो गए थे, अर्थात अद्भुत रूप हो गया और अद्भुत गुण, इस तरह से रूप गुण से संपन्न होकर के, ये तो स्वाभाविक है कि सुंदर शरीर से वह परम सुंदर भगवान का आलिंगन चाहती है और अपने घर ले जाना चाहती है, इसके लिए भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। ये प्रेम का पकड़ती, ऐसा नहीं था कि वो आप जबरदस्ती करती अगर भगवान छुड़ाते तो नहीं छोड़ती, प्रेम का बंधन अद्भुत होता है। परम सौभाग्यवती पुतना, अरे सैरंध्री, भगवान पर इस तरह से अपना अधिकार समझती है। क्या बोली? एहि वीर गृहम जामो न त्वाम त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथित चित्ता या प्रसीद पुरुषोत्तम। सबसे पहले कुब्जा ने संबोधन किया, हे वीर, हे हीरो, यही अनुवाद है इसका, संस्कृत में भी यही इसका अर्थ है। वीर प्रायः मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में स्त्रियां अपने देवर को कहती हैं, अपने पति के छोटे भाई को वीर। हे वीर अर्थात हे अभीष्ट पूर्ण समर्थ, हमारी इच्छा को पूरा करने में आप समर्थ हैं, आप वीर हैं। अन्य बहुत से वीर हैं, उसके कहने का आशय था कि जो धर्म वीर हैं, दया वीर हैं, लेकिन आप ऐसे वीर हैं कि स्त्रियों के धर्म का नाश करने में समर्थ हैं आप। किसी स्त्री का पतिव्रत धर्म नहीं रह सकता है आपको देखकर। ये भी एक भाव है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ लिखते हैं। आप अद्भुत वीर हैं। कोई स्त्री अपने को धैर्य में नहीं रख सकती है भगवान कृष्ण को देख, कोई जूती स्त्री, इतना अद्भुत प्रभाव है उनका। तो हे वीर एही, आइए, एही का अर्थ आइए, कुछ भी नहीं बोली पहले कि कहाँ आइए क्या। तो सब लोग जाने के लिए तैयार हैं, श्री बलराम जी और श्रीराम आदि सखा वृंद। हे वीर आइए एही, बहुत जोर से नहीं बोल रही है, भगवान तो बिल्कुल पास में है, तो ऐसा बोल रही है कि दूसरे लोग ना सुने। हे वीर एही, मम गृहम त्वम आगच्छ इति अर्थ, आप हमारे घर आई, चलो, मेरा घर मथुरा नहीं है और आपका कोई घर नहीं है, तो आप हमारे घर चलिए। केवल शब्द निकला पहले ए ही आइए, तो उसका अर्थ है कि मम गृहम त्वम आगच्छ, यह भाव। तो भगवान ने कहा कि ननु निज संगीन इमान विहाय कथम एकाकी जाया मिति चेतता। अरे हमारे इतने साथी हैं, बड़े भाई हैं, सब इनको छोड़कर तो मैं आपके घर में अकेले कैसे चला जाऊं, ये क्या कहेंगे। ये कहां गया कैसे, अपना समाज छोड़ करके मैं आपके घर में कैसे चला जाऊं। फुसफुस बात हो रही है, धीरे कुब्जा सुन रही है और भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान अपने को छिपा तो सकते नहीं है, सब लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अगर ज्यादा धीमे से बोले तब और शंका होगी, क्या क्या परामर्श कर रहा है। पर सखाओं को आनंद आ रहा था, ये लोग देख रहे, वो लोग इसको मजाक समझ रहे थे, कृष्ण बहुत कौतुकी है, मजाकी है, स्त्री से झुक झुक बोल करके अब मजाक कर रहा है। तो वो लोग भी बड़े ही उत्सुकता से देख रहे थे, श्री बलराम जी भी बिल्कुल निकट ही थे। गृहम जाम, और तो भगवान ने कहा कि हम कैसे सबको छोड़ करके अकेले आपके घर में जाए, कैसे अकेले जाए। तो कहती है अकेले नहीं, यामह बहुवचन है, हम घर जाएंगे। किसके घर में? हमारे घर। गृहम जाम, मम नहीं कह रहे, हम घर चलेंगे। शायद आप कब से पहुंचे हैं, घूम रहे हैं, थके मांदे होंगे, मथुरा में कोई आपको जलपान कराया कि नहीं, वैसे सब कुछ हुआ था सुदामा के यहां, भगवान का स्वागत खूब अच्छी तरह से हुआ था, लेकिन उसको क्या पता है। तो फिर हम घर चलेंगे, मतलब आप, आपके सखागण और मैं, ये सब चलेंगे। यामह शब्द का यही भाव है, हम सब चलेंगे। त्वम अहम एते च, सब घर चलेंगे। चलिए, तो क्या भोजन के लिए बुला रही हो? भगवान सुनाकर बलराम जी को बोल रहे हैं, कोई तैयारी तो होगी नहीं, जाने पर बहुत देर हो जाएगी, फिर भोजन बनाना पड़ेगा, ये करना। लेकिन नहीं, भोजन तो करना तो आवश्यक है ही, मैं आपको इस राजपथ पर नहीं छोड़ सकती। न त्वम त्यक्तुम इहोत्सहे, यह इस राजपथ पर जहां सब लोगों का सम्मर्द है, मतलब बहुत भीड़ है, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती, छोड़ने का उत्साह नहीं कर रही, यहां नहीं छोड़ सकती। तो भगवान ने कहा कि ये ऐसी बात बोल रही हो, सब लोग सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या मेरे बारे में सोचते होंगे। तो सैरंध्री और खोलकर बोलने लगी, तो कहने लगी, तो इन मथित चित्त आया प्रसिद्ध पुरुषर सभा, आपके द्वारा मेरा चित्त मथ दिया गया है, चित्त हमारा अब विवेक में नहीं है, और ये मेरा दोष नहीं है, ये आपके स्पर्श का दोष है, आपने हमको छुआ उसी समय मेरा मन मेरे बस में नहीं है, ये आपका स्पर्श दोष इतना तगड़ा है, आपने हमारे चित्त को मथा है। त्वयोन मथित चित्त आया, आपने हमारे मन को व्याकुल किया है, चित्त मथा है, तो आप उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे, कौन करेगा? आप चलिए हमारे घर, सबके साथ चलिए, सबके साथ चलिए। आखिर कुब्जा को भी तो समाज का भय है, तो वो भी कह रहे सभी चले। वास्तव में चाहती थी कि भगवान कृष्ण से उसका संगम हो, साथ हो, लेकिन बोलने में कहते सभी चले, और सभी चले, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, कि भगवान सबके साथ नहीं गए, जब गए हैं तो केवल उद्धव जी को लेकर गए। ऐसे विषय में जहां प्रेमिकाओं से बात करनी होती थी तो उद्धव को ही भगवान बीच में डालते थे, जैसे जब ब्रज में भेजना हुआ तो उद्धव जी को भेजे राधा रानी और अन्य गोपियों को समझाने के लिए। तो कुब्जा के घर भगवान गए लेकिन श्री बलराम जी को नहीं ले गए, और सखा आदि तो सब चले गए वृंदावन नंदगांव पहले ही, उस बार जब वो गए थे। तो त्वाम त्यक्तुम न उत्सह न सक्नोमि, तो भगवान कहते हैं तद उक्त्या लोका इह राजमार्गे हसन्त, तुम्हारी उक्ति से इस राजमार्ग पर सब लोग हंस रहे हैं, और अन्यथा संभावयन्ति, हम दोनों के विषय में बहुत गलत विचार लोगों का हो रहा है। ये तो मान लीजिए भगवान एक कहे, लोग सुन रहे हैं और तुम तो होश में हो नहीं, ऐसे बोल रही हो, लोग बहुत गलत सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो। तो कहती हे पुरुषर सभा, हे पुरुषोत्तम, हे समस्त पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ, त्वेन मथित चित्त आया, आपके द्वारा मेरा चित्त मथा गया है। चित्त मथ दिया जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? किस चीज से मथा गया है? सौंदर्य के मंदराचल से मथ दिया गया। ये बात एकदम, मेरा चित्त आंदोलित है, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं आपको यहां राजपथ पर नहीं छोड़ सकती। प्रसीद हे पुरुषोत्तम, आप हम पर प्रसन्न होइए। त्वया मथितम उन्मथितम उत्कर्षेण मथितम इति तव एव अयम स्पर्श दोष न ममेति इति भाव। आपका ही दोष है, आपने हमको क्यों छुआ है, आपके स्पर्श में वो जादू है कि ये पागल बना देता है। वास्तव में भगवान का स्पर्श जिस भगवान को कभी मिला होगा, क्या कहना, दुनिया में पता नहीं किसका किसका रोज धक्का गाड़ी में बस में हो ही रहा है। और एक प्राकृत शरीर है और प्राकृत शरीर से और प्राकृत शरीर हाड़ चाम का संस्पर्श हो रहा है। चिन्मय सिद्ध विभूति भगवान का स्पर्श जिसको मिले, कितने भाग की बात है, वह व्यक्ति फिर संसार के लायक नहीं रह सकता। और समस्त आध्यात्मिक साधना का यही अंतिम फल है ना, कि देह गेह भूल जाए, कृष्ण की स्मृति हमेशा रहे। कृष्ण के स्पर्श से वो एक सेकंड में सारा संसार भूल जाएगा कृष्ण के अलावा। यह अद्भुत गुण है। तो कुब्जा कह रही है कि हमारा जो चित्त ऐसे पागल हो गया आपके लिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपका स्पर्श दोष है, दोष आपका है, इसीलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, अपने घर पर चलिए और सबके साथ चलिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः। रामस्य पश्यतः, श्री राम वही देख रहे थे इन दोनों के व्यवहार को। कुब्जा और भगवान कृष्ण के परस्पर प्रेम व्यवहार को और पकड़ी हुई है उत्तरीय, इसको भी एक ईश्वर देख रहा है, परम ईश्वर के इस लीला को दूसरा ईश्वर खड़ा होकर देख रहा है। रामस्य पश्यत, राम देख रहे थे, उनके देखते देखते सब बात हो रही थी और उत्तरीयांत पकड़ा गया था। तो भगवान इतने फेर में पड़े हैं कि वे श्री बलराम जी पर देखने लगे, बलराम जी के मुख पर देखने लगे और अपने सखाओं के मुख पर देखने लगे। जब वह इस तरह से कहे कि आप हमारे घर चलिए, आपने हमारे चित्त को मत दिया है, तो अब भगवान, अब इसको केवल की एक हंसी करने, हंसी हो रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब अपने सखाओं का मुख और श्री बलराम जी का मुख देख करके बोले, देख करके मानो ये कहते हैं कि अरे अभी तुम लोग नहीं हंसते हो, मथुरा में हास्य मूर्तिमान स्त्री का रूप बना करके आया है, ये क्या बोल रहे हो, अभी आप लोगों को हंसी नहीं आ रही है। वो लोग तो हंसी रहे थे, तो श्री कृष्ण ये समझाना चाहते थे कि ये समझे कि कृष्ण मजाक कर रहा है, स्त्री से ऐसे झूठ बोल करके उसे जाना चाहता है। और कुब्जा ये समझे कि प्रियतम श्याम सुंदर हमारे बस में है, हमको चाहते हैं, ऐसी बात भगवान बोले। एक ही वाक्य से बलराम जी कुछ और समझ रहे हैं, सखा लोग और समझ रहे हैं, अच्छा फेर में डाला इस औरत को बात बनाकर, तो वो लोग हंस रहे हैं और कुब्जा समझ रहे कि हमारे प्रेम पास में, प्रेम के अधीन है हमारे, ऐसी बात बोल रहे हैं। देखियो क्या बोले श्याम सुंदर, बात बोल रहे हैं कुब्जा से और देख रहे हैं श्री बलराम जी पर, सखाओं पर। तो बोले, एष्यामिते गृहं शुभ्रु, हे सुंदर भौं वाली अर्थात हे परम सुंदरी, ते गृहं एष्यामि, मैं आऊंगा, अभी नहीं आ रहा हूं लेकिन आऊंगा। ये भविष्यवाचक क्रिया बोल रहे, एष्यामि आगमिष्यामि, मैं आऊंगा तुम्हारे घर, लेकिन एक काम है, अपना काम पूरा करके आऊंगा। क्या काम है, कंस वध रूप प्रयोजन अभी बाकी है, मैं कंस का वध करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के तुम्हारे घर आऊंगा। अभी बहुत चिंता लगी हुई है, मतलब मन में भाव ये था कि हमारे माता पिता कारागृह में है और कंस इस तरह से अत्याचार कर रहा है जादवों को, तो साधितार्थ मैं जब अपना अर्थ प्रयोजन साध लूंगा, पूरा कर लूंगा, तो एकदम निश्चिंत आऊंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा। एष्यामि ते गृहं शुभ्रो पुंसामाधिविकर्षणम् साधितार्थो गृहाणाम्नः पन्थानम् त्वं परायणम्। हे शुभ्रु, भ्रू भ्रू का अर्थ है भौं, असु माने सुंदर, सुंदर भौहें वाले, तुम देखती हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो श्री बलराम जी के सामने और सखाओं के सामने ऐसा संबोधन करना, तो भगवान इसके द्वारा उन पर ये भाव व्यक्त कर रहे हैं तुम बड़ी सुंदरी हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कहूंगा तो ये लोग ये समझेंगे केवल झूठी प्रशंसा कर रहा है, तुम बहुत सुंदरी हो तुम्हारे घर मैं आऊंगा। लेकिन वो समझ रहे थे और वास्तविक इसका अर्थ यही था कि मैं तुम्हारे प्रेम के वश में हूं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, वास्तविक अर्थ यही था, प्रताड़ना वंचना नहीं थी, धोखा नहीं था, सत्य था बिल्कुल। पर साधितार्थ, साधित कंस वध रूप अर्थ प्रयोजनम जेन तथा भूत निश्चिंतो भूत्वा इति अर्थ, ये सब श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं। मैं जब अपना प्रयोजन पूरा कर लूंगा, कंस का वध कर लूंगा, और इसके बाद अब कोई चिंता नहीं रहेगी, निश्चिंत होकर के तुम्हारे घर आऊंगा। घर का, गृह का विशेषण भगवान बोल रहे हैं, पुंसाम आधि विकर्षणम, पुरुषों के मानसिक पीड़ा का शमन होता है तुम्हारे घर से, आधि विकर्षणम, चिंता समाप्त होती है। इसका और भी बहुत बहुत अर्थ है, लेकिन सामान्य अर्थ भगवान ने बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि पुरुषों की काम पीड़ा का शमन होता है तुम्हारे घर से। यद्यपि कुब्जा ऐसी नहीं थी, एक तो भगवान की प्रिया है और शरीर पर कुबड़ था, तीन जगह से टेढ़ी थी, तो उसका किसी से कोई संपर्क कुछ भी नहीं था, लेकिन पुंसम आधि विकर्षण, पुरुष की चिंता दूर हो जाती है तुम्हारा घर ऐसा है तो ऐसे घर में मैं आऊंगा, तो ये सखाओं को और श्री बलराम जी को वास्तव वंचित उनको कर रहे हैं, उनको वंचित कर रहे हैं, वंचित का मतलब इनको कुछ दूसरा समझा देना, तो वे लोग समझे कि अरे ये तो प्रकट मजाक कर रहा है, एक स्त्री है और कहता है बहुत पुरुष जाकर के वहां अपनी पीड़ा का शमन करेंगे, तो ये गाली हुआ ना एक प्रकार से, एक स्त्री के प्रति बहुत इतने सखा जाए सब नवजुवक, तो ये गाली देना हुआ। तो भगवान श्री बलराम जी को सखाओं को ये कह रहे हैं कि मैं तो इसको गाली दे रहा हूं, भागे कैसी औरत, इसके चक्कर में पड़ना नहीं है, वो ये समझे, लेकिन श्याम सुंदर तो प्रेम के पास में है, प्रेम के बस में है, वे कहे कि मैं आऊंगा। और ते गृहम एष्यामि, तो कुब्जा समझ रही है कि प्रिय अयम माम स्वीकरोति इति, ये समझा रहे कुब्जा को, रामादिन प्रति तो ग्राम्याम स्त्रियाम उनम अयम कृष्ण वंचयति इति द्योत्यना, वो लोग यही समझ रहे थे कृष्ण इस ग्राम में स्त्री को वंचित कर रहे हैं। भगवान को लीला करना है तो सर्वसमर्थ है, यदि मान लीजिए 10-20 आदमी हो और 10 भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि के एक दूसरे से विपरीत के, लेकिन उसके बीच में कृष्ण बोलेंगे और सबका समाधान हो गया, वो अपने मन का अर्थ लगा रहे हैं, वो अपने मन का लगा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बोल करके भगवान गीता पूरा किए, अब उसका अर्थ अपना खींचा तानी सब करते रहते हैं, सही अर्थ हुआ इसका, ये अर्थ हुआ इसका, अर्थ हुआ कोई अर्थ नहीं है। मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझमें मन लगाओ, यही अर्थ। लेकिन अब देखिए गीता पर टीका भाषी, तो रामकृष्ण परमहंस कथा कहते थे, तो वो कहे कि एक बार पांच छह अंधे जा रहे थे रास्ता में, और तब तक एक हाथी आया, कोई अंधा देख नहीं रहा था, हल्ला हुआ हाथी आया, हाथी आया, तो वो अंधे सब देखने लगे, टोने लगे हाथी कैसा है, तो किसी को केवल पूछ पकड़ में आया, तो उसने हल्ला किया, हाथी रस्सी जैसा होता है, हमने हमारा पूरा एक्सपीरियंस है, तो केवल पूछ ही देखा था, पकड़ा था, और एक गया तब तक पैर से टकराया वो अंधा, हाथी खड़ा होगा उस समय तो वो कहा कि हाथी पेड़ जैसा, खंभा जैसा होता है, कोई अंधा गया केवल उसका हाथी का कान टच किया तो कहा नहीं ये तो सूप जैसा होता है। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, जो अंग पकड़ता था वही बताता था कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वे लोग ब्लाइंड हैं जो कृष्ण के भक्त नहीं है, चाहे कुछ भी हो, वो क्या समझेंगे कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है। गीता में भगवान साफ बोलते हैं, तुम अर्जुन, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो, तुम मेरी बात को समझोगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, नहीं तो और क्या ऋषि मुनि नहीं थे गीता सुनाने के लिए। क्या एक सैनिक गीता का अधिकारी था? हां, क्योंकि वह कृष्ण का भक्त है। और सब बड़े बड़े ब्राह्मण वहां खड़े थे कुरुक्षेत्र में, बहुत बड़े ऋषि मुनि भी आए थे सब लोग, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं सुनाया, अर्जुन को सुनाया। और अर्जुन ने जितना गीता को समझा उतना कौन समझेगा, वो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की आज्ञा का पालन किए। तो भगवान कृष्ण को वही समझ सकते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। भक्तों के अलावा और सब उन ब्लाइंड अंधों के समान हैं, नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन भी है, और प्रोसेस में हो तो सबसे सुगम भी है। तो भगवान कृष्ण ऐसे जगह पर हैं, ऐसी भाषा बोलना है, देखना है, क्योंकि बलराम जी और सखा दूसरा समझें और कुब्जा दूसरा समझे, जो श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं वही समझे। गीता का अर्थ भी भगवान जिसको जैसा समझाना चाहते हैं वैसा ही समझता है। कोई कोई ब्लाइंड ऐसा बोलता है, नहीं, अर्जुन के रथ पर जो कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, तो वो अर्जुन के रथ पर बैठे हुए कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे हैं, उनके भीतर जो परमात्मा है उसके लिए कह रहे हैं। परमात्मा तो, अब परमात्मा को तो कुछ चाहिए नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि हमको बहुत प्यास लगी है, हमको एक गिलास पानी दो, और कोई देने के लिए उद्यत हो तो दूसरा उसको कहे तुमको पता नहीं है ये स्वामी जी नहीं पानी मांग रहे हैं, इनके भीतर जो आत्मा है वो मांग रहा है, और आत्मा कभी प्यासा होता नहीं है, मरता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है, इसलिए पानी देना बेकार है, मत दो, यही अर्थ हुआ। अरे एक गिलास पानी दो, उसका अर्थ यही हुआ कि ठंडा पानी ला करके दिया जाए। भगवान कहे मेरा भक्त बनो, तो कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं मेरा का मतलब है वहां पर तुम अपने को ही बैठा सकते हो, तुम कह सकते हो दुनिया से कि मेरा भक्त बनो, अब वहां पर कृष्ण को मत रखो, अपने को रखो, चाहे अपने गुरु को रख दो, गुरु बोले कि मेरा भक्त बनो तो वो गीता थोड़े कह रहा है। अगर कोई वक्ता ये कहे कि मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो, तो इसका अर्थ है कि वो गीता का अर्थ नहीं बोल रहा है, कुछ दूसरा बक रहा है। मैं कहूं कि मुझे प्यास लगी है तो इसका परपोर्ट अब दूसरा लिखे कहे कि जो सुने तो कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, वो तो प्यास किसको लगी है पता ही नहीं। भगवान गीता के वक्ता है ना, श्री भगवान वाच, उसका वक्ता कोई स्वामी कोई जोगी जति नहीं है, भगवान वक्ता है, उनकी बात को समझना चाहिए। एक ही स्थान पर मथुरा के राजपथ पर श्री भगवान बोल रहे हैं, बलराम जी उसका दूसरा अर्थ समझ रहे हैं और कुब्जा दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। अपनी प्रेमिका भगवान का उत्तरीय पकड़ करके कुछ बात कर रही है और बड़ा भाई वहीं पर उसी बात को सुन रहा है, अर्थ दूसरा लगा रहा है। तो लगा रहे भगवान जिसको जैसा चाहते हैं अर्थ लगाए वैसा ही लगाता है। अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं। केवल यही बात अगर दिमाग में सोचा जाए कि श्री कृष्ण कुब्जा से बात कर रहे हैं और बलराम जी पर देख रहे हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं जो अब जो बात बलराम जी के सामने नहीं होनी चाहिए वो हो रही है और जो कुब्जा के सामने नहीं होनी चाहिए वो बलराम जी खड़े हैं, फिर भी भगवान निर्वाह सब कर लेते हैं। सर्व कला विशारद तो बोल रहे हैं मैं आऊंगा तुम्हारे घर, हम लोग आएंगे। भगवान बड़े सावधान है, ऐसा नहीं कहेगा मैं आऊंगा, हम लोग आएंगे। और पहले कहे साधितार्थ एक वचन में, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग आएंगे। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, कंस का वध कर लूंगा तब हम लोग आएंगे। अगर कह दिए होते कि मैं आऊंगा तो श्री बलराम जी कुछ और सोचते। जब भगवान ने कहा कि हम लोग आएंगे तब सखाओं को सबको संतोष हो गया कि ये केवल प्रताड़ना है, केवल इसको वंचना कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। तो हम लोग कैसे हैं? अगृहाणाम, मथुरा में हम लोगों का कोई घर नहीं है, घर तो नंदगांव में है। भगवान के कहने का आशय था मथुरा में हम लोगों का कोई घर नहीं है, अथवा मथुरा आदि कुछ नहीं लगा रहे हैं, केवल कह रहे हैं अगृहाणाम, हम गृह हमें हमको गृह नहीं है। तो श्री बलराम जी और सखा लोग यही समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहा है कि यहां घर नहीं, तो ठीक ही कह रहा है, अभी तो कोई भाड़ा पर भी घर नहीं लिए। कोई घर नहीं है, घर है क्यों नहीं, अपने बाप का वसुदेव जी का घर है तो अपना घर है ना, लेकिन वो भी जेल में है तो घर रहकर क्या करेगा, तो घर नहीं ही है ऐसा भगवान कह रहे हैं। या अगृहाणाम का अर्थ है घर है भी तो हम अपना घर छोड़ चुके हैं, नंदगांव में घर है, गोकुल में घर है, वृंदावन में, तो उसको छोड़ चुके हैं, हम बिना घर के हैं। और असली अर्थ अब उसको कुब्जा को ये समझा रहे हैं, न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्चते, गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। तो हम लोगों का घर नहीं है, गृह नहीं है, मतलब हम अभी अविवाहित हैं, हम लोग अभी अविवाहित हैं तो हम लोग आएंगे, हम लोगों का घर नहीं है, कोई पत्नी नहीं है और ईश्वर की कृपा से तुम रास्ते में ही मिल गई हो तो हम तुम्हारे घर आएंगे। विवाह हुआ नहीं है और एक स्त्री आग्रह कर रही है विवाह के लिए, तो भगवान स्वीकार कर रहे, ठीक है, हम अग्री हैं, हम बिना पत्नी के हैं तो हम लोग आएंगे। अच्छा, एक तो अग्री है घर नहीं है और दूसरे हम लोग पंथ हैं, पंथ का अर्थ है कि हम यात्री हैं, घूम रहे हैं। तो यात्री को अगर अपने आप कोई फ्री घर मिल जाए रहने के लिए तो कौन नहीं लेगा, और ऊपर से सेवा करने के लिए कोई विवाह करने के लिए स्त्री तैयार हो तो 55-60 वर्ष में भी लोग विवाह कर रहे हैं, ये किशोर अवस्था का लड़का क्यों नहीं करेगा। वो भी हाय विवाह, हमको पत्नी मिले पत्नी मिले, इसके लिए कई शहर छान डालते। यहां स्वयं ही लड़की आग्रह कर रही है कि आप हमारे घर चलिए, हमारे प्रियतम है, हमको आपने सब कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया है। तो जो कुब्जा का आग्रह है वास्तव में बिल्कुल सुंदर है, समीचीन है, उचित है, और भगवान उस प्रेम का प्रतिदान कर रहे। ठीक है, मतलब हम बिना गृह के हैं, बिना पत्नी के हैं, उसको ये अर्थ समझा रहे हैं, हम बिना पत्नी के हैं और अब पत्नी ग्रहण करने योग्य होने ही वाले हैं, हो ही गए हैं ऐसे भी हैं 11 वर्ष के, लेकिन परम किशोर अवस्था जैसा लगते हैं, परम सुंदर। तो अग्रह हैं और पांथ हैं, राहगीर हैं, पंथ में हैं तो पांथ हो गए, पथिक है। पथिक को घूमते घूमते किसी शहर में अकोमोडेशन मिल जाए फ्री में, और भोजन बनाकर खिलाने वाली, पैर दबाने वाली और ऐसी पत्नी भी मिल जाए, तो अब क्या चाहिए व्यक्ति को। लेकिन अगर इसका अर्थ ये कहा जाए कि बलराम जी क्या यही समझ रहे हैं, नहीं, बलराम जी समझ रहे हैं कि उसमें गाली दे रहा है इस औरत को। एक औरत के लिए बहुवचन का प्रयोग करना कि हम लोग बिना विवाह के हैं, तो इतने लोगों से वही ये कहीं का विवाह होगा क्या। तो श्री बलराम जी समझ रहे हैं कि गाली दे रहा है, ठीक है, मजाक कर रहा है। इस तरह से भगवान बोले। विसृज्यमाभ्यागिराभ्या बाण्या, तो भगवान गए, इन आग्रह किया होगा पीताम्बर छोड़ दीजिए, उतरिए छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं अच्छा नहीं है, तो छोड़ दिया उसने। मधुर वाणी से समझाया, मधुर वाणी में भगवान बोले, और कुछ बात तो ऐसे बोल रहे तो जो दुख केवल कुब्जा सुन पा रहे। मैं बाप की कसम खा करके कहता हूं कि मैं मथुरा आपके लिए आया, आपके लिए केवल आया। लेकिन लोग हंसी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो उसे छोड़ दिया। मधुर बाणी बोले थे, पहले जैसे बोले हैं कि मैं आऊंगा, या चंदन मांगने में जो बात बोले थे कि किसके लिए ले जा रहे हो, क्या हमको दोगे, वो भी मधुर बाणी थी। और पीताम्बर पकड़ने के बाद, पुत्रीय पकड़ने के बाद मधुर बाणी बोले, ऐसा मत कीजिए, और मैं निश्चित आऊंगा, और सच पूछो तो मैं मथुरा तुम्हारे लिए ही आया हूं। और इतना कहने पर तो ठीक है, ठीक। तो उसने छोड़ दिया। विसृज उसको फल का श्री भगवान आगे चले, तो आगे मथुरा का बाजार पड़ रहा था, बणिक पथई। बणिक पथ का अर्थ है कि दोनों साइड में दुकानें थी, व्यापारी लोग थे, सब दोनों तरफ से अवैश्य लोग थे। बणिक पथई, देखिए अब बणिक पथई वैश्यों ने किस तरह भगवान का स्वागत किया। सब दोनों तरफ केवल गोयल गर्ग और मीतल यही सब भरे पड़े थे। तो वे सब स्वागत कर रहे हैं। अग्रसेन महाराज के 12 पुत्र हुए थे, तो उनके अलग अलग नाम थे ये सब, तो उससे ये सब वंश परंपरा चली है वैश्यों की। और अग्रसेन महाराज बहुत धार्मिक पुरुष थे। अब जगह जगह देखते हैं ना, अग्रसेन धर्मशाला, अग्रसेन समाज, और ये तो बाद में हुए, लेकिन वंश परंपरा तो वही चल रही थी। तो बणिक पथ है, बाजार में भ्रमण कर रहे हैं, भगवान के सौंदर्य को तेज को देख करके सब लोग अपने अपने दुकान से का कर्मशाला से उठ उठ करके आ रहे थे। नानो पायन तांबुला स्रगंधय साग्रजोर्चित, अनेक प्रकार के उपायन ला रहे थे, वस्त्र मिठाई और रत्न रत्नमाला आदि स्वर्ण आदि सब ला रहे थे, नाना उपायन और तांबूल स्वगंध सब अपने अपने घर से दुकान से तांबूल ला रहे थे। बणिक पथय का अर्थ केवल एक दुकान नहीं हुआ, बणिक पथय का अर्थ है वैश्यों का घर जहां था ये सब लाने लगे, तो सब अपने अपने घर से तांबूल ला रहे हैं। तो श्री भगवान कई सखाओं को पान बांटते जा रहे थे, देते जा रहे थे। जो एक बार की घटना है सुदर्शन सिंह चक्र लिखे है कि जब सुदामा जी द्वारका गए थे तो भगवान की 16108 पत्नियों ने कहा कि हमारे घर इनका भोजन होना चाहिए, हमारे घर होना चाहिए, हमारे घर, सबके लिए अलग अलग भवन था। भाई भगवान के मित्र आए हैं तो आज हमारे यहाँ पधरावनी करें, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ। लेकिन भगवान ने कहा कि अपने मित्र अब इनको समझाइए, ये रुक नहीं रहे, ये कहीं दिन रुकेंगे। तो एक दिन में अब जिसको खिलाना हो तो इनको खिला दीजिए, बस अब 16108 दिन नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, तब सबके घर में बनने लगा पकवान। चक्र जी लिखे, सबके घर में पकवान बनने लगा विविध प्रकार के, सबके घर में 56 भोग। और भगवान ने सुदामा जी को कहा कि अब अपनी भाभियों की इच्छा को पूरा करना आपका कर्तव्य है, हम कैसे समझाएंगे। सुदामा जी कहते मैं मर जाऊंगा, ब्राह्मण मैं खा नहीं सकता, ऐसा काम मत करो। सर नहीं नहीं, आप अब आप उनको समझाइए, हम क्या करें। भगवान कह रहे आप खाइए, लीजिए लीजिए। तो सबके घर से 56 भोग विविध थालियों में सब ला रही थी, अपने अपने सेवकों के द्वारा सब ला रहे थे। पहाड़ जैसा जमा हो गया सुदामा जी के लिए। तो चक्की थी कि इस आइटम का क्या नाम है, वो जानते भी नहीं थे। देखते थे चक्की ठोकर कि इसका क्या नाम है और कैसे खाया जाएगा, कौन पहले चालू किया जाएगा, कौन बीच में, कौन बाद में, और कौन कंबाइंड करके जैसे दाल भात खाया जाता है खाया जाए, तो बिल्कुल फेर न पड़े। वे कहते कृष्ण हम खाना जानते नहीं हैं, हम कुछ भी हैं, क्या खाएं। तो भगवान कहते नहीं, आपके भाभियों की इच्छा है, आप जो भी समझे आप इसको पूरा करें। मैं भाभी मैं गलत कह रहा हूं, इनकी औरत भाभी लगती थी सुदामा जी के लिए, कृष्ण छोटे थे सुदामा जी से। भाभिया नहीं, मैं जो भी कहते होंगे, इनकी रुचि रखिए, इनकी रुचि रखिए। तो सब रुचि अब सुदामा जी एक कवर काटते हैं किसी में, तो अब इतना 16000 बार में उसमें से काटना होगा। सुदामा जी तंग हो गए। तो सबके बाद मान लीजिए भोजन पूरा हो गया, पीने के लिए खाने के लिए सब जो भी हुआ, अब हमारे घर का तांबूल चाहिए मुखवास, तो 16108 बीड़ा पान का आया और उसने कहा कि भले हमारा भोजन आपने नहीं किया लेकिन हमारा पान जरूर खाए। तब 16000 पान कहां से कचड़े, क्या करे। कोई डिबिया भी नहीं लाए थे कि रख लें, ले जाकर खा दे, फ्रिज में रख देंगे और खा दे। चक्र जी अद्भुत लिखे हैं, सब छपा हुआ है। तो वहां पर बणिक समुदाय में मथुरा में भगवान का जो भव्य स्वागत हो रहा है, वो सोने के आभूषण, वस्त्र, मिठाई के डिब्बे आदि सब कुछ तांबूल मालाएं ला ला रहे हैं, माला में रत्न माला और पुष्प माला सब। इसका अर्थ यह है कि अब वो हायर करके रिक्शा वक्सा सब नंद बाबा के बैलगाड़ी पर जा रहा है, क्या करे। जो प्रेम से दिए हैं तो अब भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य है वास्तव में उन वैश्यों का जिन्हें भगवान की सेवा करने का यह अवसर मिल रहा है और भगवान स्वीकार कर रहे हैं। साग्रज बलराम जी के साथ और अन्य सखाओं के साथ सब स्वागत हो रहा है। अब वैश्यों की पत्नियों का वर्णन किया जा रहा है, वो कितनी परम भक्ता हैं। तद दर्शन स्मरक क्षोभाद आत्मानं न विदन स्त्रियः विश्रस्त वास कबर बलया लेख्य मूर्त। वैश्य समाज इस तरह से भगवान की सेवा कर रहा था। वास्तव में भगवान की सेवा जो हो रही है आज इस युग में वैश्यों के द्वारा ही हो रही है। एक कवि ने लिखा है कि कलयुग चढ़ने पर जो जो बड़े बड़े दानी थे पहले के, जैसे भगवान विष्णु सबसे बड़े दानी हैं, भगवान शिव बहुत बड़े दानी हैं, तो इन लोगों ने तो एकदम जवाब दे दिया। कलयुग में ये लोग भी दानी नहीं रह गए। तो भगवान विष्णु तो जाकर के क्षीर समुद्र में छिप गए कि कोई मांगने न आवे, वो कभी कहता है। वो जाकर के समुद्र में छिप गए, अपने ससुराल चल जाए, और शिव जी भी अपने ससुराल हिमालय में भाग गए। पर्वत में कौन खोजने जाएगा उनको, ना बिहड़ पर्वत में चढ़ेगा तब ना मांगेगा कुछ कि हमको दे दिए। और शिव जी तो पर्वत में छिप ही नहीं गए, एकदम नंगा होकर दिखाया कि हमारे पास कुछ नहीं रहा है, इसको कम से कम सुन करके भी कोई मांगने का साहस नहीं करेगा, बेचारे के पास कुछ रहा नहीं। पहले महादेव थे, महादानी थे, लेकिन अब तो कपड़ा भी नहीं जुट रहा है इनको, तो वे तो एकदम झाड़ ही दिए, नंगा हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। और भगवान विष्णु तो पता ही नहीं लगेगा कि कहां गए, क्षीर सागर में चल रहे। तब ब्रह्मा जी बहुत तंग हुए कि अब क्या करें, दुनिया में कौन दान करेगा, कौन लोगों को जिलाएगा खिलाएगा। तब भगवान ने वैश्य समाज की सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने व्यापारी वर्ग की सृष्टि किया। तब उनको व्यापारियों की सृष्टि करके संतोष हो गया कि ये लोग अब धर्म कर्म बचाएंगे। तो यही वर्ग ऐसा है जो भगवान के मंदिर में देता है, गरीबों को देता है, साधु संत को देता है ना, ये सत्य है ना। ब्राह्मण लोग किसी ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, लेते लेते आदत हो जाती है उनको, देने की कोई आदत नहीं होती, ये सत्य है ना। ब्राह्मणों में शायद ही कोई दानी होता होगा, कि दानी तो वैश्य होते। और सब जो दुनिया में जो भी मंदिर है चल रहा है या गरीबों को भोजन चलता है तो व्यापारी वर्ग देता है। तो कभी इस प्रकार से ध्यान करता है कि भगवान तो चले ही गए क्षीर समुद्र, तो कौन डूबेगा जाएगा उनसे मांगेगा, पता ही नहीं, किसी को मांगना होगा तो भगवान से कैसे अप्रोच करेगा। अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल भाग गए, क्षीर समुद्र में भाग। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इस पर वो कभी कहते। भगवान शिव तो ऐसे भागे कि अब कुछ है ही नहीं, अब क्या दे। सचमुच भगवान ब्रह्मा ने व्यापारी वर्ग की सृष्टि किया तो कुछ धर्म बचा हुआ है, नहीं तो सब खत्म हो गया हो। ऐसे व्यापारियों के समुदाय में श्री भगवान गए हैं और उनका बहुत स्वागत हो रहा है। अब उनकी स्त्रियों के बारे में कहते हैं, या सभी स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के सौभाग्य का वर्णन किया करके अब समस्त स्त्रियों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं, इतने सुंदर हैं कि तद दर्शन स्मरक शोभा, कृष्ण का दर्शन करके स्त्रियों के हृदय में इतनी लालसा उत्पन्न होती थी भगवान को देखने की बारंबार, उस क्षोभ से, स्मरशोभ से, स्मरण के क्षोभ से स्त्रियां अपने को नहीं जान पाती थी। नात्मानं अविदन स्त्रियां, ऐसे सब पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का प्रभाव होता था, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव स्त्रियों पर होता था। कम से कम पुरुष अपने को जानते थे कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, लेकिन स्त्रियां जब ही देखती थीं तो उनको देह का और आत्मा का कोई स्मरण ही नहीं रहता था कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, इसका कोई स्मरण नहीं रहता। विश्रस्त वासक कब्र बलय लेख्य मूर्त,
बिहारी को लड़की के पास शादी है करना धान दी, अंदर आग लगी तो शादी दे देने, नाम मैं नहीं जानता उनकी लड़कियों का,
तो हम थोड़े जानते हैं, आप बोलिए।
वो गिरधारी प्रभु की जो लड़की है उनके चाबी दे दे करुणा धाम की, क्योंकि फास्ट सर्किट में आग लग रही है तो पूरे में लग सकती है, तो चाबी दे दे।
तो विश्रस्त वास सब कबर, भगवान का स्मरण करके स्त्रियां ऐसे मुग्ध हो जाती थी, उनके वस्त्र सरकने लगते थे, वस्त्र संभालने की सुधि नहीं रहती थी। विश्रस्त वास, विश्रस्तानी वासांसी, और कबराणी बलयास बलयानी जसंता, उनके केश के बंधन कबर खुल जाते थे, उसको नहीं कभी संभाल पाती थी। जब अपना स्मरण रहे तब तो संभाले, कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के सौंदर्य आदि में इतना आकृष्ट हो जाती थी कि वे अपने केश पास को नहीं संभाल पाती थी, केश बिखर जाता था, बिखर जाता था, फूल माला गिरती रहती थी, गिरती है। या बलय, यहां तक चूड़ियां, हाथ की चूड़ियां गिर जाती थी जमीन पर। इसका अर्थ यह है कि भगवान को देख करके एक विकार होता था, जो प्रेम की अष्ट सात्विक विकार है, तो उसमें इतना हाथ छीण हो जाता था कि चूड़ी नीचे गिर जाती। और इतना ही नहीं, बलय लेख्य मूर्तया, वे ऐसे कृष्ण को देखने लगती थी, ऐसे ठिठक जाती थी, जैसे लगता है कि दीवाल पर चित्र मूर्ति है, चित्र मूर्ति। और इवा भी नहीं लगा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इवा का अर्थ होता है जैसा, ये भी नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल अभेद कर रहे हैं। जैसे दीवाल पर कोई चित्र है तो उसमें पलक गिरती नहीं है, हाथ हिलता नहीं है, कोई चल चाल नहीं है, ऐसे स्त्रियों की दशा हो जाती थी श्री कृष्ण को देख करके, चित्र प्रतिमा की तरह हो जाती थी। कि दीवार पर बना हुआ चित्र या मूर्ति क्या कभी बोलती है, या पलक गिरता है, चलती है, हाथ हिलाती है, नहीं। यह अद्भुत प्रभाव भगवान का होता था स्त्रियों के ऊपर। लेख्य मूर्तय चित्र प्रतिमा, स्त्रियों की दशा सुखदेव गोस्वामी अपने भाव नेत्र से देख रहे हैं, कृष्ण को देख करके स्त्रियों की क्या दशा होती थी। अब वस्त्र ढीला हो गया है, वलय खुल गया है, केशबंद खुल गया है, कंकड़ गिर रहा है, ये तो दूर की बात रही। भी ऐसे हो जाते थे कि चित्र प्रतिमा की तरह बस खड़ी है तो खड़ी है, आंखों का पलक गिरना भी बंद हो जाता था, निर्निमेष देखती रहती थी, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं। जहां भी श्री कृष्ण जाते थे स्त्रियों की ये दशा होती थी। भगवान अद्भुत हैं, सुंदर हैं तो कमाल कर दिए सुंदरता है, और वो नित्य हैं। ऐसा नहीं कि आज सुंदर हैं और इसके बाद बूढ़ा बाबा हो जाएंगे, हैं सुंदर अनादिकाल से अनंत काल तक तो सुंदर ही रहेंगे। उनका अप्रतिम सौंदर्य है, जिनको देख करके स्त्रियां चित्र प्रतिमा की तरह दीवार पर बने हुए चित्र के समान बिल्कुल स्तंभित रह जाते हैं। क्या प्रभाव है सुंदर। ब्रज में भी ऐसा होता था, ब्रज में तो इससे भी ज्यादा होता था। कोई स्त्री बिल्कुल नवविवाहिता घर में आई है और वो कृष्ण को देख ली कहीं रास्ते में गाय चरा करके आते हुए, जैसे बस खड़ी की खड़ी रह गई और सास बिल्कुल, अभी इसको क्या हो गया, और वो कुछ भी कहे वो सुनती ही नहीं है, वो तो देखी तो एक देखती ही रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। और घर पर अगर वो ले जाती है उसको पकड़ करके, तो गई घर पर तो कृष्ण श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर, बिल्कुल उन्हीं का स्मरण है। वैद्य बुलाओ, ये करो ये करो ये करो ये करो, झाड़ फूंक करो, क्या क्या रोज चलता रहता था, और रोज श्री कृष्ण का दर्शन होता ही रहता था। इसके द्वारा ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान अद्भुत सुंदर है। इस श्लोक में वणिक पत्नियों का, वणिक स्त्रियों का अथवा समस्त इंद्रियों का स्त्रियों का वर्णन किया जा रहा है। कभी नहीं जान पाते, अपना देह स्मरण नहीं रहता था, मतलब देह कैसे है और हम कहां खड़ी हैं, क्या कर रही हैं, किस घर की हैं, क्या, कुछ भी स्मरण नहीं रहता, केवल श्री कृष्ण का स्मरण रहता है। तो फिर सैरंध्री पर यह जादू हुआ भगवान के लिए, वो बिल्कुल पागल हो गई। कौन आश्चर्य की बात, ये है इस कथा का सारा अंश। अब दूसरी कथा श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पौराण। ततः पौराण पृच्छमानो धनुष स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। ततः भक्तों पर इस प्रकार अनुग्रह करने के बाद, अथवा मथुरा के व्यापारी वर्ग के मुहल्ले से गुजरने के बाद, श्री भगवान अब मथुरावासियों से पूछने लगे, पृच्छमान। अपृच्छक नहीं कह रहे हैं, एक बार नहीं पूछे, कई बार पूछे कि धनुष जग कहाँ है, तो कोई कहा होगा कि आगे से मुड़ जाइए, चाहे चलिए मैं बता रहा हूं, तो फिर भी पूछते हैं कहां से रास्ता मिलेगा, कहां पर है। भाई क्यों पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ ईश्वर होकर के, भगवान होकर के क्यों पूछ रहे हैं। इस पर सनातन गोस्वामी प्राज्यर्थ करते हैं, धनुष के जो रक्षक थे, जो सिक्योरिटी लगे हुए थे, जहां जग चल रहा था, स्वाहा स्वाहा, ब्राह्मण बैठे थे और सब चारों तरफ से सुरक्षा हो रही थी, तो उन सुरक्षा कर्मियों को भ्रम में डालने के लिए कि वे समझे क्या रे लड़का है, कभी सजग न हो जाए, इसके लिए उनको भ्रम में डालने के लिए और पूर्ववासियों को मोह में डालने के लिए अभी तो 11 वर्ष का लड़का है, देश काल आदि का पूरा ज्ञान नहीं है, अच्छा इस शहर में नया नया आया है तो इसलिए पूछ रहा है, तो उनको मोहित करने के लिए या भक्तों के भक्ति को बढ़ाने के लिए, पूर्ववासियों के भक्ति को बढ़ाने के लिए ये मुग्ध लीला कर रहे हैं। इस तरह अनजान की लीला, मुग्धता की लीला। अन्यथा कई बार पूछना कि धनुष कहाँ है, धनुष कहाँ है, या दर्शन करना चाहते हैं, पूज्य है ना, उसकी पूजा हो रही थी। श्री नारद जी से जब कंस ने कहा कि मैं कैसे बुलाऊं कृष्ण बलराम को, नारद जी ने ही कहा अरे शिवरात्रि आ रही है और धनुष यज्ञ करो। धनुष यज्ञ बहुत प्रसिद्ध यज्ञ है, क्षत्रियों में वही यज्ञ होता है। भगवान श्रीराम को भी धनुष तोड़ना पड़ा था जनकपुर में, उस धनुष की भी बहुत पूजा हो रही थी। जब भगवान ने तोड़ दिया तब आकर के परशुराम जी बमकने लगे, कौन तोड़ा, कौन तोड़ा, कौन धनुष तोड़ा। तो सब राजा तो खुश हो गए, जो भी हुड राजा जुटे थे वहां बदमाश खुश है, अब मजा मिलेगा धनुष तोड़ने का। कौन तोड़ा, कौन तोड़ा, तो वो लोग तो आ जाकर के प्रणाम करने लगे। तो अच्युत धनुष स्थानम पृच्छमान, धनुष के स्थान को पूछते पूछते पहुंचे, पूछ रहे भाई एड्रेस, स्थान कौन गली मुड़ेगा, कहाँ है, क्या है, सब पूछ रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था पूछना भगवान, अगर बिना पूछे भगवान चले गए होते तो यही कहा जा रहा है कि सर्वज्ञ कृष्ण है, सब जानते हैं, लेकिन अज्ञ कृष्ण बन करके जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। पूछ रहे हैं कहां पर धनुष है, बहुत लोग जुटे हैं, जग हो रहा है, ये भाव व्यक्त करने की जाएंगे तो धनुष की परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, ये सब करना नहीं था। हाँ तो वहां जनकपुर की बात में कह रहा था कि परशुराम जी लगे कहो कौन तोड़ा है, कौन तोड़ा है, तो अन्य राजा लोग तो आकर के प्रणाम करने लगे, अपने पिता का नाम बता बता करके, मैं ये हूं सरकार, मैं ये हूं सरकार। जनक जी आकर प्रणाम किए, जनक जी तो बिल्कुल भयभीत हो गए थे कि पता नहीं क्या करेंगे, क्षत्रियों के प्रख्यात शत्रु, 21 बार जो इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किए थे, एक बार एक भक्त हमसे पूछा कि भगवान परशुराम जी 21 बार जब क्षत्रियों का संहार कर चुके थे फिर भी क्षत्रिय क्यों बच गए। तो हमने कहा कि जब 20 बार करने के बाद भी बचे तो नहीं पूछ रहे हो तो 22वें बार के लिए बच गए होंगे, तो एक ही बार में साफ कर दिए ना, वो इसका मतलब है कि बहुत लोगों को मारे, पृथ्वी क्षत्रिय हीन कर दिए, इसका अर्थ ही नहीं है कि सभी क्षत्रिय मार दिए गए, तो क्यों बच गए। तो मैं कहा कि 22वें बार के लिए बच गए। जनक जैसे भगवान परशुराम जी कहते हैं कहुजड़ जनक धनुष कै तोड़ा, अरे जड़, सबसे बड़े ज्ञानी को इस तरह से बोल रहे हैं, अरे जड़ जनक, जो द्वादश भागवत में एक है जनक महाराज, धनुष कौन तोड़ा। जनक जी तो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ये तो राम पर प्रहार करेंगे, अरे बोलते क्यों नहीं हो, कौन तोड़ा, कौन तोड़ा। वो लोग तो खूब खिलखिलाकर हंस रहे थे राजा लोग, अब मजा मिलेगा धनुष तोड़ने का। परशुराम जी कुल्हाड़ी लेकर के और वीर वेश में थे, ब्राह्मण वेश में रहते तो अच्छा लगता लेकिन बहुत लड़ाकू वेश में थे। भगवान बड़े सुशील भाषा में आकर बोले, प्रणाम किए पहले, और कह दिए कि धनुष शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपके दासों में कोई एक है, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। तो परशुराम जी कहते रहे जो शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। अजीब बात बोल रहे हैं, जब इस तरह से गर्म होने लगे तो भगवान के से बिना पूछे ही लक्ष्मण जी खड़े हो गए। कहने लगे ऐसी धनुही तो बहुत तोड़ दिए खेल खेल में, इसके लिए क्या स्पेशल क्रोध कर रहे हैं। धनुष न कह करके लक्ष्मण जी धनुही कहे ना झूठ, तो परशुराम जी और गर्म हो गए। शिव जी के धनुष को धन ही समझ रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हम तो समझे कि सभी धनुष से कहीं समान है। ये छुए श्री राम रघुनाथ जी छुए, छुअत टूट रघुपति में दोषु, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं, धनुष को छुए और टूट गया है, अब क्या दोष है श्री राम का। करते करते तो लक्ष्मण जी कह दिए जब से आए तब से खड़े हैं, जब बैठिए आराम कीजिए, कुछ पानी पी रहा हो पानी पीजिए। और क्रोध से और शरीर गर्म हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है, जरा बैठिए, कोई पंखा चालू करो ठंडा। अब तो इनका क्रोध और बढ़ गया है। वो बहुत लंबा संवाद है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण अब धनुष तोड़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा स्मरण आ गया। तो पूर्ववासियों से पूछ रहे हैं, पूछते पूछते धनुष के स्थान पर पहुंचे, तो तस्मिन प्रविष्ट यज्ञशाला में पहुंचे, बहुत सजाया गया था वो भवन। तो पहुंचे तो दृश्य देखे धनु, धनुष को देखे, आयंद्रम इव अद्भुतम, अद्भुत धनुष देखे, जो इंद्र धनुष के समान था। इंद्र धनुष कहने का मतलब कई रंग थे उस धनुष के, और पेंट किया गया था, सजाया गया था, और अच्युत क्यों कहा जा रहा है, ज्ञान और ऐश्वर्य से कभी च्युत न होने वाले सर्वज्ञ भगवान भी पूछ रहे थे पूर्ववासियों से, जो सर्व ज्ञान संपन्न है नित्य ही, वे पूछ रहे थे यह अच्युत की लीला है। तो अच्युत सर्वथा ज्ञान आदि ऐश्वर्य से च्युति रहित होने पर भी पूर्ववासियों से पूछे, न पूछ करके उस स्थान में पहुंचे और धनुष को देखे, अद्भुत का अर्थ है विस्मयावहम, आश्चर्य हुआ है। मतलब श्री सुखदेव को समीक्षा वर्णन करते हैं, जब भगवान ने प्रवेश किया श्री बलराम जी, तो देख करके धनुष को श्री कृष्ण की आंखें प्रफुल्लित हो गई कि कैसा धनुष है, कितना विशाल और अद्भुत है, अद्भुत रंग है, अद्भुत शोभा है इसकी, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं श्री बलराम जी से। तो फिर श्री कृष्ण देखा पुरुषैर बहुभीर गुप्तम, बहुत से पुरुषों के द्वारा, आरक्षी दल के द्वारा, पुलिस के द्वारा वो सुरक्षित था, कोई उस घेरा में जा नहीं सकता था जहां धनुष रखा गया था, तो बाहर बाहर परिक्रमा करते थे। लेकिन श्रीकृष्ण जब गए तो तस्मिन सामने सिद्ध कर रहा है, धनुष के बिल्कुल निकट चले गए, तो कुछ लोग तो रोके, हे लड़का ऐसे वो लोग डांटे, ये बच्चा किधर से आया, अरे पूजा का स्थान है, इधर पैर कैसे रखा, बाहर 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 बाहर। जो आरक्षित है सिक्योरिटी वो तो रोके ही, और जो भी दर्शक थे परिक्रमा कर रहे थे वे सब भी रोकने लगे, कंस से उनको भय हुआ, ये वो सोचा कि कंस को पता चलेगा कि लड़का जा करके धनुष के स्थान पर अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध मतलब उस स्थान में जाना ही अशुद्धि थी, देवता है धनुष, उसकी पूजा हो रही है, वहां पर बिना पैर धोए जैसे तैसे वहां जाना मना था, लेकिन श्रीकृष्ण गए और देखे, ये भी देखे कि बहुत से लोगों के द्वारा वो सुरक्षित है, रक्षा हो रही है, और अर्चितम परमार्धिमत, और जिसकी अर्चना की गई है, पूजा की गई है, सोना चांदी हीरा चढ़ाया गया है अर्थात धनुष में ही जड़ा गया था, वह धनुष बहुत रिद्धिमत था, बहुत धन से युक्त था, तो लोग रोक रहे थे, अरे इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, लेकिन उनके रोकने के बाद भी बार्ज मारा निर्भीक कृष्ण, मनुष्य सब मना कर रहे थे, मथुरा के लोग मना कर रहे थे, स्नेह से मना कर रहे थे, कौन से कुछ नुकसान करेगा इस बच्चे को, तो इसलिए वो रोक रहे थे, और पुलिस वाले रोक रहे थे, सब रोक रहे थे, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, लेकिन कृष्ण किसी का निवारण नहीं माने, और गए और धनुष को बाएं हाथ से उठाए और ऐसे खड़ से तोड़कर फेंक दिए, बाएं हाथ के जैसे कोई बच्चा गन्ना तोड़ देता है, ऐसे एक हाथ से तोड़ते ही देखे हैं ना, ऐसे खड़ा करता है तोड़ देता है, और जो तोड़े तो धनुष की जो रस्सी थी ज्या थी वो भी दो खंड में हो, उतने विशाल धनुष को बाएं हाथ से उठा लेना और ये हाथ नहीं लगाना, एक हाथ से तोड़ करके खत्म करना, ये है ईश्वर का काम, भगवान का काम। जो धनुष 3.5 लाख मन भारी था, केवल कंस उसको उठाया था एक बार, शिव जी का धनुष भी ऐसा ही था, केवल पूजा होती थी, कोई उठा नहीं सकता था, भूप सौर सदस्य कहीं बारा लगे उठावन तरह नटारा, कई राजा मिलकर के उठा रहे थे, नहीं उठा था, तो ये धनुष विवाही का, लेकिन ऐसे विशाल धनुष को और वज्र सार से बने हुए इस धनुष को एक हाथ से उठाना और तोड़ देना, ये भगवान का काम, इसलिए धनुष भंग बहुत प्रसिद्ध लीला है भगवान की, और वो भी वार्ज मारा कर सब निवारण कर रहे थे, कोई कोई पुलिस तो हाथ पकड़ने की भी कोशिश किया, मतलब कंस के पुलिस, आजकल के कोई कमजोर पुलिस नहीं, तो अपाई मतलब कमजोर है, भोजपुरी भाषा है, बलवान एक से एक थे और रोक रहे थे, चलो इधर मत आओ इधर मत आओ, हाय हाय इधर नहीं, तब तक वो तो धनुष साला में प्रवेश करने को मना कर रहे थे, वो क्या जानते थे कि तोड़ेगा तो गए और एक हाथ से धनुष को लिए और चार से तोड़कर फेंक दिए, वार्ज मारा निर्भी कृष्ण प्रसह धनुराज दे करेण वामे न सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रबभंज मध्य तो जथेक्षु दंडम मद कर उरुक्रम महान पराक्रमी महान बलशाली भगवान श्रीकृष्ण वामेन करेण बाएं हाथ से सलीलम सावहेलनम यथाशक्त था अवहेलना पूर्वक उठा लिए, जैसे धनुष है ही नहीं, कोई लकड़ी है छोटी सी, इस तरह से उठा ली, और सब लोग मना कर रहे थे वहां निकट नहीं जाना, और जिसकी पूजा हो रही थी जो पूरे फेस्टिवल का उत्सव का केंद्र था, उस धनुष को उठा करके अवहेलना पूर्वक तोड़ दिए, पर उद्धृतम लिए निमिषेण अतिशीघ्र लिए, उठाने में देर भी नहीं लगी, और एक ही हाथ से धनुष को झुका करके उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ाए, धनुष को झुका करके प्रत्यंचा चढ़ाए, निमिष भर में क्षण भर में उसकी प्रत्यंचा चढ़ाए, चढ़ाकर पश्यता निर्णाम सबके देखते देखते सबके सामने सबका तिरस्कार करते हुए और धड़ से तोड़ करते हुए पश्यतम सब देख रहे थे, कुछ लोग तो हक्का बक्का हो गए, रोक रहे थे लेकिन देख रहे थे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तब तो सबके देखते देखते तोड़ कर बहुत जल्दी। जैसे मद करी, मद में भरा हुआ करी हाथी, मदमत हाथी गन्ने को तोड़ दे, इस तरह से श्री कृष्ण उस धनुष को तोड़ा। मैं तो पहले उदाहरण दे दिया बालक जैसे तोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, बालक को कभी कभी बहुत परिश्रम पड़ जाता है गन्ना तोड़ने, और फसक जाए तो फसकने समझते हैं, कोई कोई गन्ना गांठ पर टूटता है तो टूट जाता है, लेकिन अकस्मात अगर गांठ के बीच में तोड़े तो बस उसको तोड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन मद करी मतवाला हाथी जैसे इच्छु दंड को तोड़ देता है, वैसे भगवान ने धनुष को तोड़ा है। कोई कोई शब्द है जो केवल भोजपुरी में ही समझ में आएगा। तो इस धनुष भंग की लीला को असल में सुखदेव गोस्वामी गा करके कह रहे हैं, थोड़ा बड़ा छंद है ना? करेण बामे न सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभुभंज मध्यतो जथेक्षु दंडम मद कर उरुक्रम। गा करके कह रहे हैं, तो जब धनुष टूट गया, मना करने के बाद भी इतना ढीठ लड़का करके तोड़ दिया, तब जो धनुष की रक्षा करने वाले थे, नहीं तो पहले धनुष के टूटने से जो भयंकर आवाज हुई उससे पहले गिर गए सब पुलिस वाले, जहां तक पहले बेहोश हो गए उस आवाज से, लेकिन इसके बाद जब होश हुआ तो धरो धरो पकड़ो पकड़ो बांधो, कहां गया कहां गया, केवल हल्ला भर कर रहे थे। कहीं कहीं हल्ला लोग करते हैं तो जैसे सियार या कुत्ते भी, एक जगह कहीं हुआ हुआ करता है तो बिना मतलब के दूसरे दल में हुआ हुआ कर रहे हैं। तो जो पहरेदार थे वहां लगाए गए थे कंस के द्वारा रक्षा करने के लिए, तो पहले तो गिर कर बेहोश हो गया आवाज से, कितने लोगों को अब तो रेस्ट रूम में जाना पड़ा होगा, बाथरूम में जाना पड़ा क्योंकि पेशाब वसा उतर गया होगा चले गया, इतनी जोर की आवाज है। इसके बाद तदरक्षिण सानुचरं कुपिता, क्या है वहां कुसम, आतताई न ग्रहीतु कामा आबब्रु गृहताम बध्यताम इति। इसके बाद सानुचरं श्री कृष्ण को उनके अनुचरों के साथ, मतलब श्री बलराम और गोपों के साथ सब लोग घेर लिए, जितने भी उस धनुष के रक्षक थे हजारों की संख्या में थे सब, वे आकर के घेर लिए, आबब्रु चारों तरफ से घेर लिए, और घेर करके उनको पकड़ने की इच्छा से लगे कहने, और सभी घेरने वाले आतताई थे और शस्त्र लेकर आए हैं, दोनों लड़के शस्त्र नहीं लिए हैं, जब श्री कृष्ण शस्त्र नहीं लिए हैं, बलराम शस्त्र नहीं लिए हैं, खाली हाथ है, और ये सब शस्त्र लेकर के आए, इसलिए उनको आतताई कहते हैं। आतताई श्रीकृष्ण की जिघांसा की इच्छा से, वध करने की इच्छा से वे चारों तरफ से उनको घेर लिए और कहते थे गृह्यताम गृह्यताम गृह्यताम, मतलब ग्रहण करो, पकड़ लो पकड़ लो, पहले यही कहते थे पकड़ लो, ये हिम्मत नहीं होती थी कहने की मारो मारो, अभी जो इस धनुष को तोड़ा है तो उसको पकड़ने इतना ही काफी है, तो गृहताम गृहताम इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे कौन पकड़े। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, पकड़ो और पकड़ करके राजा कंस के पास ले चलो। तो राजा कंस के पास लेकर के चलेगा तो कम से कम वो तो सोचेगा कि इसने अपनी ड्यूटी किया भाई, नहीं सफल हुआ लेकिन ड्यूटी किया। तो पकड़ो और पकड़ करके ले चलो राजा कंस के पास। तो राज्य जीवित ही पकड़ करके ले चलो, देखना मारना मत। वो बिना मतलब के बोल रहे हैं। देखना मारना मत, पकड़ो पकड़ो। अगर कुछ लोगों के मन में भी आया कि भाई मारना मत, इतना सुंदर लड़का है, बस पकड़ करके ले चलो। बद्धता, फिर बाद में इसको बांधो, इसको पास से जकड़ करके बांध करके रखो। कम से कम मच्छर रहेगा तो इसको रोज देखेंगे ना। इतना सुंदर लड़का है। ये भाव उनका था, सरस्वत अर्थ है, इनको बांधो बांधो, पकड़ो पकड़ो बांधो, राजा कंस के पास ले चलो। इति बदंतः, इस प्रकार से बोलते हुए आबब्रू, आवरण कर लिए, घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। तो श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो ये भागने नहीं देंगे। भागना नहीं था भगवान को, जैसे किसी सिंह को 10-20 सियार घेर ले तो ऐसा नहीं है कि वो सिंह घबराएगा कि अब कैसे जाए क्या करें। एक झपट्टा में सैकड़ों सियार मारे जा सकते हैं। और तुरंत ही श्री बलराम जी पहुंच गए, कृष्ण सिंह और बलराम सिंह, दो सिंह पहुंच गए। और दो टुकड़ा था धनुष का, दूसरा अस्त्र नहीं था। एक को श्री कृष्ण ने लिया, तुरंत श्री बलराम जी बिना कृष्ण से कहे हैं उसको ले लिए। और इसके बाद लगे मारने दोनों भाई, वहां पर जितने भी धनुष के रक्षक आए थे, कंस की सेना, सबको मारने लगे। और उस मारना और गिरना, बस मर जाना, खत्म हो जाना, ये है भगवान श्री कृष्ण। कोई अलग अस्त्र शस्त्र नहीं ले गए थे, धनुष के दोनों टुकड़ों को दोनों भाई पकड़े, एक एक टुकड़े को अब उसे मारने लगे। अथतान दुरभि प्रायान विलोक्य बल के सव क्रुद्ध धनवन आदाय सकले तांस जगमतु। जब ये लोग घेर लिए तब भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम ने देखा उनके दुरभि प्राय को, कि कृष्ण का वध करना चाहते हैं, दूषित अभिप्राय थे। ये देख करके श्री बलराम और केशव क्रोधित हो गए और धनवन सकले, धनुष के दोनों टुकड़ों को उठाए और तांस से जघनतु, उसी टुकड़े से, धनुष के टुकड़े से उन लोगों का वध कर दिया। धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम्रोदसी दिशः पूरयामास जमसुत्वा कंसस्त्रा समुपागमत। धनुष के टूटने का, चौड़ से जब टूटा, उसकी इतनी आवाज निकली कि सारे आकाश में, पृथ्वी पर, दिशाओं में, पूरयामास, वो शब्द सब जगह भर गया। और उस शब्द को सुन करके कंसस्त्रा समुपागमत, कंस को बहुत भय हुआ, तो पहले से ही भयभीत रहता था, धनुष टूटने का केवल शब्द सुना तो वो तो गिर गया, जहां था वो बेहोश हो गया, बहुत भय हुआ उसके बाद, धनुष के टूटने की आवाज सुनकर। इसका अर्थ है बहुत ध्वनि हुई, बहुत आवाज हुई, और वो आवाज समस्त लोकों में व्याप्त हो गई। स्वर्ग में भी देवताओं ने आवाज सुना, पाताल में भी सुना, सर्वत्र पृथ्वी पर सब जगह आवाज सुनाई पड़ी, इतनी आवाज उत्पन्न हुई धनुष के टूटने से। तो कंस क्यों भयभीत हो गया, क्योंकि धनुष टूटने की आवाज थी और कंस को पहले बताया गया था कि जिस दिन ये शिव जी का धनुष टूटे, ये भी शिव जी का ही धनुष था, इसकी पूजा हो रही, तो उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो अपने मृत्यु की संभावना करके उसको बहुत त्रास हुआ, बहुत घबराया। तो इसके द्वारा कि शब्द इतना कठिन हुआ, इतना दूर में गया, इसके द्वारा यह सिद्ध की कर रहे सुखदेव गोस्वामी की धनुष बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, बहुत कठोर था। अच्छा, जब वहां के आरक्षी मारे गए सब जो रक्षा करने वाले थे धनुष की, तो इसके बाद कंस सेना भेजा, उसको खबर दिया गया कि सरकार धनुष तो वही वसुदेव का लड़का तोड़ा है जो आपका काल है। उसको तो भय हुआ, लेकिन अब मरता क्या न करता, फिर सेना भेजा, किस दिन काम आएगी सेना। तो बलम, बलम का अर्थ है सेना, सेना कंस के द्वारा भेजी गई, पर उसी धनुष के टुकड़े से कृष्ण बलराम सबका वध कर दिए। सेना भेजी गई थी, वो सेना जब आई तो धनुष यज्ञ के द्वार से निकल करके दोनों भाई सेना का वध किए, और इसके बाद निकल करके फिर मथुरा में घूमने लगे, जैसे उनके लिए लगता था कुछ नहीं हुआ है। कितना मथुरा में कंस को तबाही हो गई, क्या क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, लेकिन फिर दोनों भाई चेरतु निष्क्रम चेरतु हृष्टौ निरीक्ष पुरुषम्पदा, अपने धाम श्री मथुरा जी के वैभव को देखते हुए बहुत प्रसन्न थे कृष्ण बलराम, और फिर घूमने लगे। ऐसा नहीं था कि दोनों कहीं भाग करके अब भूमिगत हो जाए, कंस से डर था, उसके राजधानी में आकर के और इतना उत्पात करके और निर्भय फिर घूमने लगे, फिर उसी राजपथ पर जहां तहां पुरुषम्पदा विलोक किया, मथुरापुरी की शोभा को विशेषता को देखते हुए फिर भ्रमण करने लगे। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशम्य पूर्वासिनः तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मे निरे विबुधोत्तमौ। मथुरा नगर के रहने वाले समस्त जन श्रीकृष्ण और बलराम के इस प्रागल्भ्य को, तेज को, तेज का अर्थ है जो दूसरों को अभिभूत कर दे, ऐसी शक्ति सबको हरा देने वाली बात, उनका सौंदर्य देख करके, उनका तेज देख करके, और उनकी उनका साहस, प्रागल्भ्य मतलब साहस, धृष्टता, प्रभाव, तो सब लोग यही माने निश्चित हैं भगवान नारायण और शंकर जी मनुष्य के रूप में आए, तो ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं मेरे विबुधोत्तम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण और भगवान शिव, यही दोनों हैं, सब लोग यही माने, अथवा देवताओं से भी उत्तम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान माने। रियलाइजेशन होता है भाई कृष्ण को कोई क्या मानता है, किस कारण मानता है, तो कृष्ण की लीलाएं, उनका स्वरूप, उनका सौंदर्य, उनका तेज और उनका अद्भुत प्रभाव, इसी से निर्धारण किया जाता है ना कौन व्यक्ति कैसा है। जो लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं कृष्ण को भगवान, क्यों नहीं मानते, उनके अपनी दिमाग की उपज है, उनकी अपनी बुद्धि है, पर श्रीकृष्ण की लीलाएं जिन शास्त्रों में दी गई हैं, उन शास्त्रों को कोई पढ़े और सुने, यदि थोड़ी भी बुद्धि वाला होगा तो समझ जाएगा कृष्ण भगवान है। मथुरा के लोग थोड़े काल के लिए देखे कृष्ण का प्रभाव, और समस्त लोग मान गए, कम से कम इतना मान गए कि ये भगवान शिव और नारायण है, ऐसा कोई दूसरा देवता भी नहीं कर सकता। इस तरह से उस महान धनुष को बाएं हाथ से इस तरह तोड़ लेना और उसके विरुद्ध में आई हुई सेना को बिल्कुल तहस नहस कर देना, मार देना, और इसके बाद निर्भय मथुरा के राजपथ पर घूमना, क्या ये धृष्टता और प्रभाव है। तो सब लोगों ने माना है कि ये नारायण है अथवा भगवान ब्रह्मा जी शिव जी। तो यदि भागवत सुनेंगे, शास्त्रों में भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, तब तो जानेंगे ना कि कृष्ण क्या है। मथुरा के लोग केवल यही नहीं माने कि वसुदेव जी के लड़के हैं, जेल में जन्म हुआ था, ये हुआ था, कहीं जन्म हो पर हैं ये भगवान। यदि कोई श्रीकृष्ण के बारे में कुछ कमेंट देना चाहता है तो उसे पहले पढ़ लेना चाहिए कृष्ण क्या है, अथवा सुन लेना चाहिए तत्वज्ञों से, जो जानकार हैं कृष्ण तत्व के वेता हैं, उनसे सुनना चाहिए कृष्ण क्या है, और तब उनके अनुगत्य में कुछ कृष्ण के विषय में बोलना चाहिए। बिना जाने मूर्खों की तरह कभी नहीं बोलना चाहिए। कोई कोई कहते, कोई कहते कृष्ण यहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं और दूसरा कोई ईश्वर है, हाँ दूसरा ईश्वर है कृष्ण का, वो है उग्रसेन जी, उनके सामने भगवान हाथ जोड़ करके खड़े रहते, कंस के पिताजी, वो मर्यादा की बात है, भगवान लीला कर रहे हैं, वही राजा बनाए उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर दूसरा है कृष्ण के अलावा। भगवान की इस महिमा को समझने का प्रयास करना चाहिए। आजकल मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है किसी के विषय में कुछ बोलना, जानकारी हो या ना हो कुछ बोलो, कुछ बोला जाए। क्यों बोलोगे, जब जानकारी होनी चाहिए तब ना बोला जाए। जब भागवत सुनता है आदमी, पढ़ता है, तब बोलने की योग्यता आती है, अन्यथा बोलने का मतलब क्या है, वो सब बकवाद होगा। बोलने के लिए कौन नहीं बोलते हैं, 10-20 बगुला एक वृक्ष पर बैठते हैं तो वो भी बोलते हैं, वही प्रवचन करते हैं, और कोई श्रोता नहीं होता है, सब बोलते रहते हैं। कई बार जब विवाद लोग करते हैं तो सुनता कोई नहीं है, सब बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनिए सुनिए, नहीं आप सुनिए, आप सुनिए, बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, कोई ध्यान से सुनता नहीं है। देखे हैं ना विवाद में। इस तरह से बिना कृष्ण के बारे में जाने और वक्ता बढ़ गए हैं संसार में, और ऐसे ऐसे वक्ता बलंडर बोलते हैं अंधे। नहीं, शास्त्रों की बात क्या करनी है, सब अपना अनुभव सुनाना चाहिए। अपना अनुभव से तुम अनुभव क्या खाक किए हो, क्या जानते हो कि दुनिया कौन बनाया है, कैसे चल रही है, कुछ पता नहीं है, और अनुभव बताओ। तो अनुभव तो यही है कि कहेगा कि एक दिन हरिद्वार नामक नगर अपने आप ऊपर आकाश से बैठ गया, यहां इसका कोई इतिहास नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये बाई चांस सब हो रहा है, ये बाई चांस पंडाल लग गया, बाई चांस इतने लोग यहां प्रकट हो गए, प्रकट हुए हैं कि कितना धक्का खा करके आए हैं पता है। जिन मूर्खों को कोई जानकारी नहीं है कैसे विश्व बना, किसने बनाया, इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सब, कैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वह व्यक्ति कभी भी अनर्गल नहीं बोल सकता है। तो भक्त ही वास्तव में भगवान कृष्ण पर ठीक ठीक वचन बोल सकते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान अपना ज्ञान देते हैं, और उनकी लीलाएं, उनके प्रभाव का वर्णन, उनके तेज का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के पन्ना पन्ना में किया गया है सब जगह। तो वे अधिकारी हैं बोलने का, प्रवचन करने का भी अधिकार वैष्णवों को ही है। अन्य लोग तो केवल मूर्खता करते हैं, जानकारी नहीं होती है, बोलना चालू करते हैं। तो बोले जो ही बोलना है, पर कृष्ण के विषय में ना बोले, अन्यथा पता चल जाएगा कि मूर्ख है ना। चुपचाप रहेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। दो सन्यासियों को एक जगह बैठा दीजिए और जब तक नहीं बोले तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है। बोलने पर पता चलेगा कि अच्छा ये जानते हैं, ये जानते हैं। बोलने पर पता चल जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान है। तो यहां ये बात सीखने के लिए है, मैं यह बोल रहा हूं कि मथुरा में सब लोग कृष्ण बलराम को नारायण समझने लगे, शिव जी समझने लगे, सब लोग कह रहे, सभी लोग मानने लगे। और वो केवल अंदाज से नहीं, कृष्ण के प्रभाव को देख करके, कृष्ण के सुघराई को, सौंदर्य को देख करके और उनके तेज को देख करके मानने लगे। तो हम लोगों को तो देखने को नहीं मिल रहा है, पर सुनने को तो मिल रहा है। हम भागवत में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो जो सज्जन हैं वास्तव में, जिनका हृदय अनेक शुभ कर्मों से, सुकृत से भरा हुआ है, उन बातों को एज इट इज ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण के विषय में तो बिल्कुल सत्य है, भगवान वेदव्यास देव कहते हैं। तो मथुरा के लोगों की जो लोगों का जो कंसेप्शन है वही हम लोगों का होना चाहिए, और उससे भी बेटर। बेटर का मतलब ये है कि हम तो और सब सुनते हैं, वो लोग कृष्ण को नारायण माने और श्री बलराम जी को शिव जी माने, लेकिन नारायण और शिव जी तो कृष्ण बलराम की विभूति है, अंश है, ये हम लोग सुनते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए मैं बेटर इसलिए कहा कि हम लोग बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक ठीक सुनना। इस तरह से लोग आपस में बात करते थे कृष्ण के विषय में, कृष्ण शिव नारायण है, ये है वो। घूमते घूमते, भ्रमण करते करते शाम हो गई, तो तय और यही बाकी है ना, 23वां श्लोक। तयोर विचरतो स्वयरम आदित्यो अस्तम उपेयवान कृष्ण रामौ वृतौ गोपः पुरा शकटमियतुः। दोनों भाई अपने संगियों के साथ मधुपुरी में इस तरफ विहार कर रहे थे। विहार करते करते, घूमते घूमते भगवान सूर्य अस्ताचल पर चले गए, अस्तम उपेयवान डूब गए। जब डूब गए, थोड़ा थोड़ा अंधकार हो गया, तब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम जी अपने डेरा पर लौट आए, शकटम, जहां नंद बाबा थे, जहां बैलगाड़ियां रखी गई थी, बैल खोले गए थे, उस स्थान पर आ गए। गोपह वृत, कृष्ण और बलराम को घेर करके सब सखा चल रहे थे। कारण ये था कि कृष्ण और बलराम ने अभी अभी हजारों लोगों का वध किया था, और वो भी कंस के आदमियों का, तो सखाओं को भय हो रहा था कि कोई कृष्ण बलराम पर आक्रमण कर सकता है। तो स्नेह से कृष्ण और बलराम की रक्षा कर रहे थे, चारों तरफ से घेर करके चल रहे थे। गोपह वृतौ, ये है स्नेह गोप सखाओं का। और सर्वेश्वरेश्वर परम बलवान भगवान की रक्षा गोप करते हुए चल रहे हैं, स्नेह हो रहा है कि जरूर कोई अटैक करेगा, कोई कुछ करेगा, कृष्ण बलराम को बिल्कुल बीच में रखकर चल रहे थे। हम रक्षक हैं कृष्ण के, जो इतना पराक्रम प्रदर्शन किए, इतनी लीलाएं कर रहे हैं, उनकी रक्षा करेंगे हम। ये भाव है, भाव ही तो सब कुछ है ना, मुख्य है। गोप सखाओं का ही भाव है कृष्ण बलराम अभी अबोध हैं और सुकुमार हैं। यद्यपि गोपों ने अनेक ऐश्वर्य की लीला को ब्रज में देखा है, अघासुर का वध, प्रभु पल्लवासुर का वध, या गोवर्धन धारण करना, काली के फण पर नृत्य करना, दवानल पीना, सब देखे हैं, लेकिन सबके बाद भी कृष्ण को अपना सखा मानते। गोवर्धन धारण जब कृष्ण किए थे तो इस उस समय भी अपनी लाठी लगाए थे कि गिर पड़ेगा, और जो बहस होती थी गोवर्धन कैसे टिक गया कैसे टिक गया, कृष्ण थोड़ा ही बोल देते थे मैंने उठा लिया मैंने उठा लिया, अरे तुम उठाए, हम लाठी लगाए थे, नहीं तो कब का गिर गया होता। इस तरह से सखा बोलते रहते, तो उनको यह विश्वास था कि हमने लाठी लगाया तब टिका रहा। कृष्ण हजारों बार ऐश्वर्य की लीला दिखाते थे कि हम भगवान हैं, ये है वो है, ये अपना सखा मात्र ही समझते थे। तो कृष्ण बलराम को स्नेह से सभी गोप सखा घेर करके चल रहे थे, कंस के द्वारा कोई आक्रमण हो सकता है, और चूंकि अब धीरे धीरे अंधकार बढ़ रहा था इसलिए और सजग हो रहे थे गोप सखा, अंधकार में कोई कहीं से किसी तरफ से आक्रमण करेगा, और वो अपने वास स्थान पर बगीचे में आए। नंद बाबा जहां विश्राम कर रहे थे आज जगमतु, श्रील सुखदेव गोस्वामी को अब ब्रज में गोपियों की याद आने लगी। ऐसा वर्णन है, सुखदेव जी कई बार वर्णन किए हैं कि दिन भर किसी तरह से दिन बिता देती थी गोपियां, क्योंकि दिन में अनेक काम रहता था, परिवार का करना होता था और सब करते, और वैसे भी कृष्ण का विरह सहते सहते वे अभ्यस्त हो गई थी दिन के समय, क्योंकि दिन में श्री कृष्ण गोचारण करने जाते थे वृंदावन में, शाम को आते थे, शाम को कृष्ण का दर्शन होता था और रात्रि में रास विहार करते थे श्री गोपीजनों के साथ, अनेक लीलाएं रात्रि में करते थे, दिन में तो विरह वैसे ही रहता था। किसी तरह बड़े कष्ट से दिन बिताती थी ब्रज में। तो अब स्मरण आ रहा है गोपीजनों का, सुखदेव गोस्वामी का हृदय विषाद से भरता जा रहा है, क्योंकि गोपी भाव भावित मति है उनकी, तो वे उसकी याद कर रहे हैं। अब जो ही रात आई तब सुखदेव गोस्वामी मानो ये कह रहे कि अब गोपियां कैसे जिएंगे बिना कृष्ण को देखे, कैसे उनका दुख मिटेगा, अब तो आज रात में प्रियतम श्याम सुंदर उनके साथ नहीं रहे। तो उसी को फिर याद करते हुए एक दूसरे भाव से बोलते हैं, भाव उसको नहीं कहें, दूसरे स्टाइल। गोप्यो मुकुंद दिगमे विरहातुराया आशा सता सिसरिता मधुपुर यभुवन संपश्यताम पुरुषभूषण गात्र लक्ष्मी हित्वे तरान भजत चकमे यनम श्री चकमे यनम श्री। अथ श्री गोपीनाम पुरजनानाम च प्रेम वर्णन उपसंहरति गोप्य इति एवं श्री भगवतः स्वैर विहरणेन तत्रत्याः परमानंदिता बभूरिति। ब्रजसुंदरी भाव भावितत्वात् अकस्मात् तद विरह स्मृति जनित विषादो श्री मुनीन्द्रः परीक्षितं पूर्व कथा स्मारयति गोप्या इति। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी सदा गोपी भाव में विभोर रहते थे। तो अब महाराज परीक्षित से पूर्व कथा का स्मरण करा रहे हैं। जिस समय श्री कृष्ण नंदगांव से चलने वाले थे मथुरा के लिए, तो गोपियां विरह से विलाप कर रही थी, भावी विरह। निश्चित ही मथुरा की स्त्रियों का सौभाग्य उदय होगा। जिस रूप को हम पीती थी अपने नेत्रों से, उस रूप रूपामृत को वे पिएंगी, वे देखेंगी, और मथुरा में निश्चित ही बहुत बड़ा उत्सव होगा। सबसे बड़ा उत्सव क्या है? श्री कृष्ण का दर्शन। तो वहां के लोग सुखी होंगे, उन्होंने कई पुण्य किया है, दान दिया है, तो उनको श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा। कई ऐसी बात गोपियों ने कहा था, विलाप में कहा था। तो वो बात सत्य हो गई गोपियों की। सुखदेव गोस्वामी यहां ये बात कह रहे हैं कि गोपियों मुकुंद विगमे, मुकुंद जब प्रस्थान कर रहे थे नंदगांव से मथुरा के लिए, उस समय उनके विरह में आतुर होकर के गोपियों ने जो भी कहा था, मंगल वाक्य कहा था, वो सब पूरा हुआ मधुपुरी में, मथुरा में। पुरुष भूषण, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्याम सुंदर के शारीरिक सौंदर्य को देख करके देखने वालों के लिए जो आशीर्वाद दिया था गोपियों ने, वो सब सफल हुआ। गोपियों ने आशीर्वाद क्या दिया था? वो विरह में कह रही थी कि निश्चित ही उनको ऐसा अवसर मिलेगा। गोपियां महान भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे मूर्धतम हैं, तो उनके मुख से निकला हुआ वाक्य कैसे झूठा हो सकता था? तो बातें सब सफल हो गई। मथुरा के नर नारी श्री कृष्ण के गात्र लक्ष्मी को देख करके धन्य हो गए, परम आनंद में मग्न हो गए। परंतु इधर मथुरा में तो परमानंद छा गया और ब्रज में महाविषाद, महादुख छाया हुआ है। रात्रि में भगवान श्री गोपीजनों के साथ विविध विहार करते थे, और आज उनको कृष्ण के साथ विहार नहीं मिलेगा, तो उनकी क्या दशा हो रही, क्या दशा हो रही? मथुरा में तो सब आनंद में है। कृष्ण के गात्र श्री को देखकर, जिस शरीर को, जिस स्वरूप को श्री जी ने पसंद किया और सबका तिरस्कार करके, सबको छोड़ करके भगवान को उन्होंने वरण किया, जिस लक्ष्मी की सभी इच्छा करते हैं पर श्री जी कभी किसी को पसंद नहीं करती, सबको छोड़ करके और भगवान से प्रेम की, तो यहां भगवान नारायण और श्री कृष्ण दोनों से अभेद करके सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण का जो स्वरूप इतना सुंदर है, उसको देख करके मथुरा के नर नारी धन्य हो गए। गोपियों ने ऐसा ही कहा था, यही होगा, और सत्य हो गया। रीता अभुवन, सत्य हो गई बात। ये सुखदेव गोस्वामी शोक में बोल रहे हैं, सत्य हो गई बात, ब्रज वीरान हो गया, मथुरा धन्य हो गया। इधर कृष्ण बलराम आ गए अपने आवास पर। वहां आकर के दोनों भाई क्या किए इसको बता रहे हैं। अवनिक्तांग्री जुगल भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम उशतुस्ताम सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकित्सितम। जब दोनों भाई आए अपने स्थान पर बगीचे में मथुरा से बाहर, तो आकर के सबसे पहले दोनों अपने चरण कमल को धोए, धोए अथवा मतलब धोया गया, जिसे सेवक होने धोए, मथुरा में भ्रमण कर रहे थे तो इसे सिद्ध होता है कि जूता नहीं लगाए थे। इसे ब्रज में तो आदत ही थी कभी जूता नहीं पहने थे, तो मथुरा में भी नहीं पहने, अथवा जल्दी जल्दी में कोई नया पन ही नहीं ले पाए। जो भी हो तो चरण कमल धोए, चरण कमल धो करके इसके बाद क्षीरोपसेचनम भुक्त्वा, ऐसा पदार्थ खाए जो दूध से सिक्त था, इसका मतलब था कि पायस खाए। क्षीरोपसेचनम, क्षीरम उपसेचनम जस पद अन्नम, अन्न खाए दूध भात खाए, इसका मतलब ये है। यदि गाढ़ आउटा हुआ दूध हो तो उसके साथ भात खाने में अमृत जैसा स्वाद मिलता है ना। तो क्षीरो पसेचनम, जल्दी जल्दी में अच्छा था, लगता है कि ब्रज से ही दूध लाए होंगे, काफी दूध होगा और सबके लिए जो भी ब्रज से आए थे उनके लिए भात बनाया गया था और दूध के साथ भात खाए। और सुखम सुसुपतु, सुख के साथ सोए, आनंद से सोए, थके मांदे थे, सवेरे रथ पर बैठ करके चले थे, दिन भर चलते रह गए, फिर मथुरा में घूमे, तो सुखम सुसुपतु, सुख से सोए, आनंद से सोए दोनों भाई। इधर कृष्ण आनंद से सो रहे हैं और उधर कंस भीतर प्रजागर, वो तो बहुत जगा रहा, कई महीने से जग रहा था, कई साल से, और उस दिन तो एक सेकंड नहीं सोया। जब ये सुना कि धनुष टूट गया, ये हो गया, तो वो तो एक मिनट नहीं सोया। सुखदेव गोस्वामी इधर वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण बलराम सुख से सोए, भोजन क्या किए, भात खाए, उपसेचन उसका क्षीर था दूध, उपसेचन जैसे हम लोग भात खाते हैं, लेकिन उपसेचन क्या होता है, दाल, बस यही उपसेचन है। दाल क्या है, पानी में पका हुआ अन्न, दूध का कोई ठिकाना नहीं। श्री कृष्ण क्षीरोपसेचनम भुक्त्वा, उनके भोजन में दूध दही घी हमेशा है, चाहे द्वारका में है, चाहे मथुरा में या वृंदावन में, सब में दूध का भोजन कर रहे हैं। अभी भी श्रीनाथ जी हैं नाथ द्वारा में, उनके खाने के लिए चार घी का कुआं है और ट्रक के ट्रक कई भक्त दानी ला ला करके कुएं में घी भरते रहते हैं। को हम लोगों ने देखा है, बाल्टी से डोर, जो डोर लगा, रस्सी लगा करके बाल्टी से घी निकाला जाता है और श्रीनाथ जी के रसोई में किचन में भेजा जाता है। तो ये विचार होना चाहिए, श्रीनाथ जी के उस घी के कुएं में हम भी एक बाल्टी घी डालेंगे, लेकिन इतना विचार नहीं होता, बल्कि हम जाकर के खाएंगे। यही विचार केवल उत्पन्न होता है ना। मन ऊंचा नहीं रहता है सब आदमी का, कम से कम मन से भी ध्यान भी करे कि हम भी एक ट्रक घी ले जाकर के डाल रहे हैं। तो कलयुग में तो मानसी सेवा भी सार्थक मानी जाती है, मन से भी कोई करे तो फल मिलता है। तो श्रीकृष्ण हमेशा घी खाते हैं, हमेशा छप्पन भोग। श्रीनाथ द्वारा में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन छप्पन भोग नहीं बनता। एक बार एक भक्त कहा था कि इतना घी खाते हैं और कुछ नहीं हुआ। अपच सब अन्य पदार्थों को खाने से होता है, शुद्ध घी आदि खाने से अपच नहीं होता है। तो भगवान दूध और भात खाए भुक्त्वा, ये आसान भोजन है कि नहीं, दूध गर्म कीजिए भात के साथ खाएंगे। आए वो आनंद ही अलग है, ब्रजवासी बोल रहे हैं। खाया इसके बाद सुखम सुसुपति, सुसुपति दोनों भाई सुख से सो गए। इधर किस मारा सुख से सोए हैं। अब कंसस्तु, कंस के बारे में सुनिए उसकी क्या दशा है। कोई बहुत देर नहीं हो रही ना, अभी तो 11 बजे हैं। कंसस्तु धनुषो भंगम दक्षिणाम सबलस्य च बधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। कंस ने सुना, क्या क्या सुना, वो तो हो सकता है टीवी भी लगाया होगा, मथुरा में झो रहा है सब देख रहा था। निशम्य का देखना भी होता है, सब कुछ सुन रहा था। एक एक क्षण में रिपोर्ट देने वाले देते थे कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। बहुत डरता था कृष्ण से, बहुत डरता था, भय के कारण स्मरण करता था। एक तो खबर सुना धनुष भंग, धनुष भंग धनुष का टूटना, रक्षिणा बध और स्वबल से च बध, धनुष की रक्षा करने वाले का बध हो गए, एक भी नहीं बचा। और सैनिक जो भेजा था पलटन उसका बध। धनुष का भंग होना, रक्षियों का मारा जाना, सेना सैनिकों का मारा जाना, ये सब सुना। और वह भी कैसे, गोविंद राम विक्रीडितम, गोविंद का और राम का केवल खेल हुआ, खेल खेल में मार दिया, कोई प्रयास नहीं, परम केवलम विक्रीडितम। उसने सुना, सब लोग वर्णन करते होंगे तो बिल्कुल उनके लिए खिलवाड़ था इनका वध करना, कोई परिश्रम नहीं हुआ। गोविंद का खेल, गोविंद कहते हैं गोवर्धन धारण जब से किए श्री कृष्ण तो गोविंद नाम पड़ा, इंद्रदेव ने गोविंद नाम दिया। तो गिरिराज गोवर्धन धारण करने की बात भी वो सुना, इसका मतलब है स्मरण आ गया कि अरे वही लड़का जो पहाड़ उठाया था, इंद्र भी जिसके आगे गिर गया घुटना टेक करके, तो मैं क्या हूं। ये बेचारा देवताओं में श्रेष्ठ देवता जिसके सामने घुटने टेक कर रो रहा था कि गलती हो गई, नहीं हो गई, वो हो गई। उस गोविंद का ये केवल खेल हो रहा था मथुरा में। इसको सुनकर के भीत बहुत डर गया कंस, पहले से ही डरा हुआ था, भीतातु भीत हो गया और ज्यादा घबरा गया, भयभीत हो गया। और इस कारण से और दीर्घ प्रजागर, बहुत काल से जगा हुआ था और आज तो बिल्कुल एक सेकेंड में आंख पर झपकी भी नहीं आई। पहले कभी कभी झपकी आ जाती थी, लेकिन जब से ये सुना कृष्ण बलराम का सैनिकों का बध धनुष का तोड़ना, तब से तो नींद हराम हो गई। अब वो देख रहा था, कई दिन से देख रहा था, इसका अर्थ ये है, और इस समय देख रहा सपना में दुर्निमित खराब चीज देख रहा, जागृत में भी खराब देख रहा था, बुरे बुरे चिन्ह देखने लगा, क्योंकि अब उसका मरण होने वाला है, आज ही, आज सवेरा हुआ है, हाँ आज ही रंगशाला में कंस मारा जाएगा। तो बहुत अपशकुन देख रहा था, बहुत से दुर्निमित जागृत में और सुसुप्ति में भी। कंस वैसे भी दुर्मति है, कंस अक्रूर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे दुर्मति है, दूषित बुद्धि वाला, और मंत्री भी सब ऐसे ही थे, तो दुर्मति दुर्निमितानी अपश्य बहुनी अचष्ट, बहुत से अपशकुन देखा, उभय था दोनों दशाओं में, जागृत दशा में और सुषुप्ति दशा में, सपना में भी और जागृत में भी देखा, जो मृत्यु की सूचना दे रहे थे, ये सब अपशकुन बता रहे थे कंस मरने वाला है। मृत्यु का दौत्य कराणी चर, मतलब जैसे कोई दूत सूचना देता है, तो ये सब अपशकुन बता रहे थे कि कौन से मरने वाला है। वास्तव में इसका बड़ा परम सौभाग्य है, ये जाएगा भगवान के धाम में, वैकुंठ में, तो इसीलिए अच्छा ही हो रहा था, ये शरीर छूट जाएगा भगवान के धाम में जाएगा कंस। ऐसे कंस के प्रति बहुत हीन भावना नहीं करनी चाहिए, भगवान की लीला में कंस का जो स्थान है, कंस का जो भाग्य है, भगवान को उसने अंत समय में देखा, उसके देह पर चढ़े हुए थे भगवान, और उसी की वो रंगशाला थी। बेचारा इतना बड़ा फेस्टिवल किया था, अगर नहीं किया होता तो कृष्ण कैसे गए होते रंगशाला में, सब सजाया गया था। तो कृष्ण कौन से सपना देख रहा है और जागृत में भी देख रहा है, अब सपने कई प्रकार के, क्या क्या देख रहा है उसका वर्णन यहां पर किया जा रहा है। अदर्शनम स्वशिरसः प्रतिरूपे च दर्श सत्यपि, जागृत दशा में क्या आप शकुन देखता था, कभी दर्पण में या जल में या दीवार में अपना रूप देखता था, तो पैर से लेकर के यहां तक दिखाई पड़ता था पर सिर नहीं दिखाई पड़ता। अदर्शनम स्वशिरसः, सब दिखाई पड़ रहा है, हाथ पैर सब, लेकिन सिर का पता नहीं, जबकि है अपने सिर पर हाथ रखकर कैसे देखता था, लेकिन ये सिर आता नहीं था, तो उसका अनुभव होता था कि सिर है, सत्यपि रहने पर भी सिर दिखाई नहीं देता। और प्रतिरूपे च सत्यपि, असत्यपि द्वितीयम च द्वैरूप्यम ज्योतिषम तथा, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता था, जो है वो दिखाई नहीं पड़ता था, सूर्य चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ रहे थे, दो नहीं है, सूर्य एक है लेकिन उसको हमेशा दो दिखाई पड़ते थे, चंद्रमा भी दो दिखाई पड़ते थे। सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि द्वितीयम असति अपि, जो है सिर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। छिद्र प्रतीतिर छायायाम, और अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था, देखता था कहीं, छाया माने प्रतिबिंब, छाया में देखता था कि छेद है, कहीं भी शरीर में छेद दिखाई पड़ता है, वहां शरीर है ही नहीं, छेद जहां तहां, छिद्र प्रतीति छाया, प्राण घोषण उपस्थिति। और आदमी जब कान बंद करता है तो प्राण वायु जो सांस चलती है उसका घोष सुनाई पड़ता है, लेकिन कंस को कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता था, प्राण घोष अनुपश्रुति, सांस लेने का आवाज कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, और स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु, वृक्ष वास्तव में हरे भरे थे, हरे थे लेकिन वे सब पीला दिखाई पड़ने लगे सोना की तरह, ये भी एक अपशकुन है। एक वृक्ष नहीं, जहां भी देखता था वृक्ष है तो सब सोना के दिखाई देते, सोना जैसे, जैसे प्लास्टिक का कहीं कहीं वृक्ष बना करके लोग दिखाते हैं बॉम्बे वॉम्बे में, लगता है कि वृक्ष है, वहां कुछ नहीं होता है। तो कंस को सारे वृक्ष सोने की तरह पीले दिखाई दे रहे थे। स्वपदानम अदर्शनम, अब कभी धूल में या कीचड़ में चलता था तो पैर का कोई निशान नहीं होता था, उसी में दूसरे लोग चलते थे तो पैर का निशान होता था लेकिन उसका कुछ नहीं। स्वपदानम अदर्शनम, पैर की छाप नहीं पड़ती थी धूल में भी कीचड़ में भी। इसका मतलब यह नहीं कि ऊपर ही रह जाता था, अद्भुत बात है पैर का चिन्ह न उखड़ना। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग, अब सपना में क्या क्या देख रहा था ये बता रहे हैं। सपना में वो देखता था कि कोई मुर्दा मेरा आलिंगन कर रहा है, मरा हुआ है व्यक्ति, मुर्दा पड़ा है तो ये कई मुर्दे उठ उठ करके मेरा आलिंगन कर रहा है। मरे हुए व्यक्ति सपना में आए तो दूसरी बात है, किसी का शरीर छूट गया है सपना में आ रहा है, लेकिन जाग वो जीवित अवस्था में सपना दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति जी रहा है, लेकिन ये सपना वो देखा है कि मरा हुआ मुर्दा आकर के मेरा आलिंगन कर रहा है। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरजानम विषादनम, और सपने में यह भी कंस देखता था कि मैं गधे की सवारी करके चल रहा हूं। और वो भी नग्न है बिल्कुल, कपड़ा नहीं पहना हूं और गधा पर चढ़ा हूं। ये सब ऐसे दुर्निमित हैं जिनसे मृत्यु की सूचना होती है। विषादनम, और ये भी देखा कि मैं विष पी रहा हूं, विष डायरेक्ट पी रहा हूं सपने में। और प्रायः नलद माली अड़हुल की माला पहना हूं और नंगा हूं। अड़हुल एक फूल होता है ना, वैष्णव लोग कभी उसको पसंद नहीं करते, काली जी को चढ़ाया जाता है। तो कंस देखा कि मैं अड़हुल की माला पहना हूं और नंगा हूं और एक अकेले हूं और पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है, सपना में देखा, दिगंबर और नग्न हूं, अकेले हूं, बिल्कुल नग्न हूं और तेल लगा हुआ है शरीर में। तो सपना में इस तरह से देखना दुर्निमित्त है, अपशकुन है। तो जगा दिया जाए कंस को, जगा करके छोड़ दे चरण। दुष्टाया निषकौरभ्य सूर्ये चाभ्य समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्ल क्रीड़ा महोत्सव। भोर होने पर, सवेरा होने पर, रात में सपना देख रहा था, अच्छा कई रात्रियों में देखा था, भोर होने पर और सूर्य भगवान जब जल से उगे तो कंस मल्ल क्रीड़ा महोत्सव करने लगा। निश्चित ही इन दोनों लड़कों को बिना पहलवानों के कोई नहीं मारेगा, अभी भी मारने के चक्कर में इतना खराब सपना देखा फिर भी कृष्ण बलराम को मारने के फेर में है। तो मल्ल क्रीड़ा महोत्सव की रचना किया, पहले से सारा सब कुछ हो चुका था लेकिन उस दिन अब सजावट बिल्कुल चालू हुई, चौका फोड़ना, श्रृंगार करना, रंगोली बनाना, क्या क्या इधर उधर सब लग गए कई समाज उसके आदमी, रंग भूमि को सजाने में, अखाड़ा को सजाने में, सब वर्णन आएगा, इसका वर्णन दोपहर के बाद किया जाएगा। तो कंस जग गया, आज ही उसका मरण है इसी दिन। यही उसके चित्त पर था कि कृष्ण को किसी तरह मारना है, नहीं तो बड़ा खतरा है, मैं मारूंगा। कृष्ण को मारने के लिए धनुष यज्ञ किया और मल्ल क्रीड़ा महोत्सव किया। किस तरह से उस रंगभूमि को, मल्ल क्रीड़ा स्थान को सजाया जा रहा है और कौन कहां बैठेगा, कंस कहां बैठेंगे और उनके साथ राजा लोग कहां बैठ रहे हैं, नंद बाबा कहां बैठेंगे, और आने वाले मंडलेश्वर लोग खंड राज्य के अधिपति कहां बैठेंगे वो सब वर्णन है, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से वर्णन है। कृष्ण बलराम सबके बैठ जाने के बाद तब हाथी को मारते हुए आएंगे, बहुत सुंदर दृश्य है। और कृष्ण बलराम को देख करके 10 प्रकार के विचार वाले लोग 10 प्रकार से उनको देख रहे हैं, ये नहीं कि सभी एक समान देख रहे हैं, नहीं, एक समान। कोई देख रहा है कि वज्र की तरह कठोर शरीर वाले हैं, कोई देख रहा है बच्चा आए दो, कोई देख रहा है स्वजन आए, कोई कुछ आए, कोई देख रहा है कि परम तत्व परब्रह्म ही साक्षात आ गए दोनों, कोई कुछ, कोई जही कह रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तीन तैसे। वास्तव में ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही से चुरा कर रामचरित मानस में भरा। एक लेखक ने लिखा है तुलसी की चोरी, तुलसीदास जी कहां कहां से क्या क्या चुराए। चुराने का मतलब यह है कि कहां के भाव को कहां रखे हैं। जनकपुर के उस सभा में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिल तैसी, वो मथुरा के रंगशाला से लिए है पूरा। यह अधिकार है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है, रामचरित मानस में है, तो रामचरित मानस में वही भागवत रख दिया गया है। अच्छा है कहीं भी उस भाव को रखना, लेकिन मूलतः यह श्री कृष्ण बलराम के लिए है। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।